نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دار قرآن 2020 پارا نمبر 25 ہر پارے کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ ہم بالکل ایک اور سیڑھی آگے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب بھی ہو رہے ہیں اور اپنے اعمال کی فکر بھی لگ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ بہت محبت سے آپ لوگوں کے رجسٹریشن فارمز کو دیکھتی ہوں۔ اردو تو اردو، انگلش کا جو سبیل الجنہ ہے اس کے بارے میں بھی ماشاءاللہ بہت ہی لوگوں کا پازیٹیو رسپانس ہے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی ہمیں اپنی نسلوں کی فکر لگ گئی ہے، اور جب ماؤں کو باپوں کو یہ فکر لگ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر نسلیں نہیں بگڑتی۔ چلتے ہیں آج کے پارے پہ، نام ہے الیہ یردو، الیہ اسی کی طرف، یردو پھیرا جاتا ہے۔ کیا علم الساعہ، علم قیامت کا، یعنی لوگ قیامت کے بات کے لیے تیاریاں تو نہیں کرتے تھے لیکن آ کے اللہ کے نبی سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت آئے گی کیسے۔ یہ بالکل غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے، لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ صرف پوچھتے رہو اور تیاری نہ کرو۔ آپ اس طالب علم کو کیا کہیں گے کہ جو نہ پڑھے نہ لکھے اور بار بار یہی پوچھتا رہے، پیپر کب آ رہے ہیں، کب ہے، ایگزام کدھر ہیں، شیٹ کدھر ہے، ڈیٹ شیٹ دکھائیے، تو استاد بھی غصے میں کہے گا نا کہ تیاری کرو۔ اور اس بارے میں اب دیکھیں گے کہ قیامت کے آنے کے کائنات میں سے بہت سارے دلائل ہیں، جیسے کہ شروع میں کہ پھلوں کو دیکھتے ہو دوبارہ کیسے کن مراحل سے نکل کر گزر کر تم تک پہنچتا ہے، تو کل تم بھی اسی طرح قبروں میں سے نکالے جاؤ گے اور پھر تم بھی آگے سے آگے جاؤ گے۔ دور حاضر کے فتنوں میں سے آج کا فتنہ بھی بہت ہی اہم ہے، بہت سنجیدہ سوچ ہے، بہت پردرد بات ہے، اور حقیقت ہے کہ ہماری نسلیں اور وہ لوگ جو خاص طور پہ غیر مسلموں میں رہتے ہیں، منورٹیز کی صورت میں، اقلیتوں کی صورت میں، اور ساتھ ہی کہوں گی کہ یہ فتنہ تو اب مسلمان ملکوں میں بھی آ گیا۔ کن کی بات کریں، کس کی کریں، کوئی ایک ملک کی بات نہیں، ورلڈ وائڈ، اور خاص طور پہ انٹرنیٹ کی سہولتوں کے عام ہونے کے بعد یہ فتنہ اتنا زیادہ آ گیا کہ ایون آپ اپنے ملکوں کے دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اسی کے بارے میں پریشان دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے، پیئر پریشر کا فتنہ، معروبیت کا فتنہ۔ آج ہم معروب ہو گئے، کس کس سے معروب ہیں یہ تو یہ پارہ آپ کو مجھے بتائے گا۔ کہہ لیجئے کہ غیر مسلموں کی ترقی سے اتنے زیادہ ہم معروب ہوئے کہ ہم ان کے پیئر میں آگے، ان کے پریشر میں آگے۔ ذہنی غلامی کا فتنہ ہے یہ۔ ہم ملک تو حاصل کر ہی لیتے ہیں، ہر جگہ کے ہر مسلمان ملک کی اگر آپ ڈیٹ دیکھ لیجئے کہ جس کو وہ آج نیشنل ڈے کے طور پہ مناتے ہوں گے، لیکن ذہنی غلامیاں آج بھی پیچھے ہیں۔ بالکل بنی اسرائیل والا حال کہ فرعون کے ڈوبتے ہی بنی اسرائیل کو نجات تو مل گئی تھی، آزادی تو مل گئی تھی، لیکن ذہنی طور پر اتنے ابھی دبے ہوئے تھے کہ چند دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حطور پہ گئے اور انہوں نے پیچھے سے بچھڑا بنا لیا۔ تو یاد رکھیے، جب قوموں کا تزکیہ نہیں ہوتا تو عموماً وہ جسمانی طور پہ بہت زیادہ آزاد ہونے کے باوجود بھی ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوتے، اور ہمارے بچے خاص طور پہ جب ویسٹ میں پلتے ہیں اور ایسے سکولز میں جاتے ہیں جہاں زیادہ اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی ہیں، تو ان کو احساس بھی دلایا جاتا ہے، ارے تم روزے رکھتے ہو، ہائے کتنا مشکل ہے۔ اور ایک مسئلہ جو آج ہماری نئی نسلوں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پہ تو انڈیلا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہ تمہارے ماں باپ تم پہ ظلم تو نہیں کرتے۔ ہماری ایک ساتھی ہے جو کسی بھی بچوں کے اسکول میں کام کرتی ہیں، بیبیز کے ساتھ، چھوٹے بچے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا آج سے کئی سال پہلے، اور بات بالکل سچ ہے ورنہ میں کبھی شیئر نہ کروں۔ کہنے لگی کہ جب کوئی نیا بچہ آتا ہے ہمارے ڈے کیئر، یا جس کو نارویجین میں برنے ہاگن کہہ دیں، تو سب سے پہلے ہم اس کو ایک نمبر یاد کرواتے ہیں، بڑا معروف نمبر ہے، میں بولوں گی تو امریکہ، کینیڈا کے لوگ جان بھی جائیں گے۔ اور وہ نمبر یہ ہے کہ اگر کسی وقت بھی تمہارے ماں باپ تمہیں کچھ کہیں، If they want to hate you, کچھ بھی کہیں، تو تم نے اس نمبر پہ کال کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے ہاں کہا کرتے تھے ایک دور میں کہ جو ماں سے زیادہ محبت جتلائے وہ پھاپے کٹن ہوتا ہے۔ अल्लाह ताला से ज़्यादा हमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन जब मुसलमानों को इस किस्म के हालात में डाल दिया जाए, उनको इस चीज़ का एहसास दिला दिया जाए कि हम उनके साथ अपना ताल्लुक़ उनकी मर्ज़ी का रखें, तो बस वह ये फितना आता है। और आज आप देखिए कि इस फितने की वजह से लोगों ने क्या कुछ बदल दिया। थोड़ा सा मैं इसको पिछले पारे के साथ जोड़ूंगी। सूरत हामीम सजदा की आयत 30 में हमने पढ़ा था, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। बेशक वो लोग जो अल्लाह को रब कहते हैं फिर उस पर जम जाते हैं, हम उन पर फ़रिश्तों को नाजिल करते हैं और वो उनको कहते हैं कि खौफ ना करो और हुज़न ना करो। और इससे आगे की आयत आपको याद होगी, इतनी मारूफ आयत है, खूबसूरत आयत है। आप देखिए कि इसमें दो बातें, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू। इस्तकामत क्या होती है कि इंसान हर किस्म के हालात में जम जाए। और मेरी नज़र में इस वक्त हम मुसलमानों को अपने दीन पे इस्तकामत ना दिखाने के बदले में ये मरूबियत का फितना भुगतना पड़ा। आज हम दूसरों से इतने मरूब क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास इस्तकामत नहीं। और इस्तकामत क्या होती है? चूँकि कल एंड पे ज़्यादा बात नहीं हुई तो चंद जुमले लीजिए ताकि आपको आज का भरा बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे दुनिया में जीने का एक अंदाज़ दिया है। आप और मैं जितना ही ज़्यादा इसके साथ चलेंगे हम खुश रहेंगे। अपने नाप के कपड़े पहनकर इंसान कंफर्टेबल फील करता है। एक एक अमल करते जाइए, अगले अमल आसान हो गए। और अल्लाह की ये सुन्नत है जो इस आयत में हमें बता दी गई कि जब आप एक अमल कर जाते हैं तो आगे 10 नेकियों के दरवाज़े आपके लिए खुलते हैं। जब अमली तकाजे दीन के ऊपर अमल के आएँ तो डगमगाना नहीं, हक को हक मानना भी है, फिर उसको एक नेमत समझना है, फिर उसका इजहार करना है, फिर उस पर जम जाना है, यानी टेक अ स्टैंड वाली कैफियत है। ऐसे लोग आज भी सिद्दीकीन के दर्जे पे फायज हो सकते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो दुनिया का नुकसान कर लेते हैं, आखरत का नहीं करते। दुनिया में उनकी आंखों में अगर आंसू आ भी जाएं तो आखरत में इंशाल्लाह मुस्कुराएंगे। ये ख़ानदान के एक एक रस्म को छोड़ते हुए अगर दिल में कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं तो साथ ही साथ सुन्नतों को अपनाते जाएं तो फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं। और अब देखिए कालू का लफ्ज़ है, काला होता है वाहिद, कालू जमा है। जमा के साथ ये बात करके ये बता दिया गया कि जब एक की बजाय सब मिलकर दीन पे अमल करेंगे तो जमना आसान होगा। अकेला इंसान भी हक को हक समझकर खड़ा हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर वो अकेला खड़ा हो गया तो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जैसे किसी भी बिल्डिंग में अगर आप देखें तो एक ईंट है ना, अकेली एक ईंट खड़ी कर दे, चाहे सीमेंट थोड़ा बहुत लगा भी दें, लेकिन डर है कि वो गिर ना जाए। जब ईंट के साथ ईंट जुड़ती है तो वो इमारत मजबूत होती है। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे को गिरने से बचाने का मशवरा देता है अल्लाह ताला, लेकिन जब मुसलमान इस पे अमल नहीं करते, जब लोगों को अपनी जान अल्लाह के दीन से और अल्लाह की बात से ज़्यादा प्यारी हो, अपना माल, अपनी रिश्तेदारियाँ, अपनी दोस्तियाँ, पीछे कितना हमने पढ़ा। कल बहुत सारे लोगों का माशाल्लाह ये फीडबैक आया कि आज के बाद हमारा फ्रेंडशिप का और सोहबत का नुक्ते नज़र ही बदल गया। हम दूसरों की बातें बोलने लगते हैं और नुकसान क्या होता है कि फिर हम इस्तकामत से जब हटते हैं तो फिर हम पीयर प्रेशर में आने लगते हैं। आपको अगर आज अपने इर्द गिर्द हालात नासाजगार भी दिखे ना, फिर भी जम जाइए। एक से एक, पहले एक ख़ानदान में चेंज आती है, फिर दूसरा आता है, और एक फ़ायदा क्या होता है कि आप माशरे में पुरसकून लोग मरूफ हो जाते हैं, लोगों में खौफ है आप में नहीं होता। ऐसे वक्त पे समझिए कि ये आपको इस्तकामत के तोहफे मिले कि फरिश्ते आपके लिए दोस्तियों को पेश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब आप और मैं कुरान से जुड़ें, आप देखिए कि अब आप कुरान पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, अब हम गुमराहियों की तरफ नहीं जा सकते। जब जाएंगे, पढ़ेंगे और अमल नहीं करेंगे तो पीयर प्रेशर भी आएगा, मरूबियत भी आएगी, गैर मुस्लिमों की तरक्की को देख कर कुड़ेंगे भी, जलेंगे भी, और उन जैसा बनना भी चाहेंगे। आज लोग उनके मुल्कों के वीज़े लगवाने के लिए पर तोलते रहे, आप देख लीजिए कि आज क्या हालात है हमारे इर्द गिर्द। अगर आप देखें तो आज क्या वाकई हमारे दिलों में गैर मुस्लिमों से मरूबियत नहीं है? चंद चीज़ों को नोट कीजिएगा कि हमें कैसे पता चले। नंबर एक, आर वी एम्बेरिस्ड मुस्लिम और नॉट। दूसरी बात है कि क्या हम सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आकर अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम को बदल तो नहीं देते? बिल्कुल उस बीमार की तरह के जो डॉक्टर के पास जाए, दवा तो ले खाए ना, क्या सेहत मिलेगी? और क्या फ़ायदा उस दवा का लेने का, डॉक्टर के पास जाने का, उसको पैसे देने का, लाइनों में लगने का, अगर इंसान ने दवा खानी नहीं? एक जुमला लिखिए और मैं सब स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी, किसी गेस्ट या लिसनर के लिए जुमला नहीं है, मैं अपने ऊपर लेकर कहूँगी, आप भी मेरे ही तरह के हैं। क्या फ़ायदा हमें पढ़ने पढ़ाने का अगर हमने अमल नहीं करना? क्या फ़ायदा हमें इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेने का, घंटों के एतबार से लेकर बैठने का, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में इस दीन को लाना नहीं? क्यों हम जब इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते तो फिर हमें सिर्फ किताबें पढ़नी है, लफ्ज़ी तर्जमा याद करना है आपने, सिर्फ ग्रामर ठीक करनी है, सिर्फ तजवीद सही करने का आपको शौक़ है, ये सब वल्लाह ही आप ठीक कर भी लीजिए, लेकिन अगर आपके अकीदे में झोल रह गया, अगर आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक कमज़ोर रहा, आपके फ़राइज़ कमज़ोर हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप दीन के इस खूबसूरत मिजाज को ना समझे और इस पे स्टैंड ना लिया, आपकी शादियों से ना पता चले कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी खुशियों से ना पता चले, आपकी गमियों से पता ना चले, तो ये खुशखबरियाँ नहीं मिलती। फिर जो एक तोहफ़ा मिलता है उम्मत को, वो गैर मुस्लिमों से मरूबियत का है। कल बनी इसराइल में मरूबियत थी फिरौन और फिरौनी कल्चर की, फिरौन चला गया, लेकिन देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के हटते ही बछड़े को पूजने लगे। आज मेरा आपका बछड़ा क्या है? क्या आज हम गैर मुस्लिमों से मरूब नहीं है? आर वी एम्बेरेस्ड मुस्लिम? कैसे? सवाल कीजिए अपने आप से। किसी भी इंसान से जब आपको कोई थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है, एक बात, दूसरी बात यह है कि आप किसी को डिग्रेडेड समझते हैं। सिर्फ मिसाल देती हूँ कि आपके घर में काम करने के लिए आने वाली मासी, और स्पेशली वो जो सफाई का काम करें, क्या आप उससे मुतासर होते हैं? आप उस जैसी ज़ुबान बोलेंगे कि ये कोई सराकी ज़ुबान बोलती है तो मैं भी बोलूं? आप उसकी तरह से कोई बहुत बड़े बड़े फूलों वाले बड़े बड़े प्रिंट पहनते हैं? सवाल ही नहीं होता। आप उसकी मदद कर देंगे, आप उसको कुछ पैसे देंगे, कुछ कपड़े ले देंगे, खाना देंगे, लेकिन आप उस जैसे नहीं बनेंगे। इसी से समझ लीजिए, हमारे अपने मुल्कों में तो कोई गैर मुस्लिम बर्तन को हाथ लगा ले तो हम उस बर्तन को धोएं कलमे पढ़ पढ़ कर, लेकिन उसी के बरक्स किसी दूसरी तरफ देखे तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। आप देखिए कि मरूबियत का पता कैसे चलता है कि हम हर कीमत पे उनके मुल्कों में जाना चाहते हैं, हमारा दिल करता है कि हम वहाँ हों। आप देखिए कि आज हम मरूब हैं तो उनकी आला तालीम से मरूब हैं हम, उनकी डिग्रियों से। और अगर आप देखें तो जब किसी कौम का तर्ज़ तालीम हम इख्तियार करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उनसे मरूब हैं। अच्छी चीज़ें तो करनी है, लेकिन वो जैसे अलामा इकबाल ने कहा था कि वो तालीम जो माँ बाप से काट दे उसको क्या करना है। और मरूबियत इतनी चाहिए कि हमारे बच्चे उसी सर्कल में चलने लगे जिसमें पूरी दुनिया इस वक्त चल रही है, लेकिन 17-18 साल का होने तक उसको नमाज का तर्जुमा नहीं सिखाया जा रहा, एक पारे का तर्जुमा नहीं। तो मरूबियत की एक पहचान क्या है? क्या हम उनके मुल्कों में जाने के लिए तैयार हैं, वीज़े लेने के लिए, अपने जेवर घर बेचने को तैयार हैं, अल्लाह के आगे क्या हम करें ना करें, उनकी एम्बेसीज के सामने रात 4-4 बजे तक जाकर खड़े हैं कि सुबह 3 बजे हमारे लिए सिर्फ एक फॉर्म हासिल करना और खिड़की पे पहुंचना मुमकिन हो, ये मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि लोगों को कितना शौक है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मरूबियत की एक और वजह होती है कि इंसान उनको वली बना लेता है। इस बारे में स्पेशली ये सूरह शूरा जो आगे आएगी, आप देखेंगे बार बार लफ्ज़ वली है, वहाँ आपको 8-10 मानी लिखाए जाएंगे, लेकिन वली बनाना क्या है कि हम उन पर नज़रें लगाते हैं, मुश्किलों में उनको बुलाते हैं, उनकी एड की हमें फिक्र है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो का दौर था, कहत पड़ गया, बहुत कोशिश की लेकिन कहत पूरा नहीं हुआ। दिल में ख्याल आया कि साथ एक गैर मुस्लिम सुपर पावर है, उनसे मदद लेते हैं, क्योंकि कर्टिसीज़ में एक मुल्क दूसरे मुल्क की मदद करता है। पैगाम भेजा, उन्होंने भी खुशी खुशी बहुत कुछ भेजा, लेकिन कुछ ना बना, पूरी ना पड़ी। एक शख्स जो बदर में शरीक हो चुके थे, ख्वाब में उनको अल्लाह के नबी दिखे और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, उमर को क्या हो गया? बस ये जुमला जब हजरत उमर ने सुना, वो सहाबी की जुबान से शुरा बुला ली कि मेरी गलती ढूंढो, मैंने किया क्या? तो जब उलमाए कराम ने गौर व फिक्र किया तो बताया कि ऐ उमर, आपने सलातुल इस्तिस्का तो पढ़ी नहीं और गैर मुस्लिम से मदद तलब कर ली, अल्लाह को इस पे गैरत आई। बस ये बात सुनने की देर थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने लोगों को जमा किया और खुले मैदान में जाकर बारिश की दुआ की, अल्लाह की रहमत से जल थल हुआ, सब कहत दूर हो गया। ये है वली बनाना। आज हमारे मुल्कों में बच्चा बच्चा ये जानता है कि हम कर्ज़ों में हैं और इस तरह की बातें अब सब जानते हैं। फिर इसी तरह किसी से मरूबियत का एक और इजहार क्या होता है? क्या आप उन्हीं के जुमले बोलते हैं? वो एक जुमला बोलते हैं, कम बच्चे खुशहाल घराना, आप भी बोलने लगते हैं। वो कहते हैं, औरत मर्द बराबर हैं, आप भी बोलते हैं। आपको तो ये बोलना चाहिए था कि फर्मा बरदार बच्चे खुशहाल घराना, ज़्यादा बच्चे खुशहाल घराना, औरत मर्द के साथ बस कुर्सी मेज़ वाला ताल्लुक़ हो तो खुशहाल घराना। यानी कहने की बात है कि घर में जितने लोग हैं वो कमाएंगे, ये जुमले हम कहाँ से सीख के आए? हमने तो नहीं पहले कभी सुने थे। फिर हम सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हम उनके मुल्कों के डिग्रीज़ के कितने मरूब हो गए, सिर्फ इस पर रिश्ता हो सकता है कि एक लड़का फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। माँ बाप नहीं कोशिश करेंगे कि उसकी नमाज रोज़ा उसका किरदार ही देख लें, वो वहाँ रहकर आया कैसे क्या हुआ। आज हम मरूब हैं तो गाड़ियों से बंगलों से घरों से सेलफोन से ये सारे बच्चे हैं, याद रखिए इस मरूबियत के। और फिर इसके बाद एक और इजहार होता है जब हम ऐसी मरूबियत का शिकार होते हैं कि हम उनके तर्ज़ मुआशरत की तरफ चल पड़ते हैं और अपनाते भी हैं ना उनकी तो बुरी आदतें अपनाते हैं, अच्छी आदत भी नहीं अपनाते। याद रखिए गैर मुस्लिमों में बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें हैं कि अगर ईमान के बाद आ जाएं तो वो लोग सीधे जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन हम देख लीजिए उनमें सादगी है, हम में तकल्लुफ है। वो सोते वक्त पे जाते वक्त पे हम अपनी मर्जियां करते, वक्त की पाबंदी जैसी उनकी आदतें वो हम नहीं लेते, लेकिन हम ज़िंदगी गुजारने का तरीका वही उनके साथ रखते हैं। फिर आप देखिए कि उन्हीं के रंग ढंग अपना लेते हैं, उनके त्यौहार, उनकी बर्थडेज, उनके वैलेंटाइंस, उनकी क्रिसमस, उनके सारा कुछ। क्या पता चला कि हमें दिल से उनके साथ कोई बैर नहीं है। हुआ क्या कि हम जब उन जैसे हो गए तो मरूबियत का शिकार हुए, और स्पेशली ख़ास तौर पे जब इंसान अल्लाह के माँ सिवा से विलायत का ताल्लुक़ हासिल कर लेता है ना तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसलिए देखिएगा कि हम कैसे विलायत बनाते हैं, यानी इस पूरे पारे में सिर्फ सूरह शुरा के चार मुकाम नोट कीजिए। नंबर एक, वली अल्लाह की ज़ात है, ये जहन में रखिएगा। विलायत का ताल्लुक आपका शौहर के साथ भी नहीं हो सकता और बीवी का और बच्चों का और माँ बाप का नहीं, यानी कोई इंसान वली हो नहीं सकता इस रंग में। शुरा आयत 9 में देखिएगा, ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है। हुवल वली यु वहुवा युहयिल मौता। आज हम डरते हैं, खौफ खाते हैं, कोई मरवा ना दे, कोई खपा ना दे, और उनकी CIDs और खत्ता के जरासीमों तक को हम बड़ी ताकतों की तरह मरूब करते हैं कि ये उसने वायरस फैलाया, ये उसने फैलाया। यानी अंदर से खौफ है इस बात का कि कहीं हमारी मौत किसी बड़े के हाथ ना हो जाए। फिर आप देखिए दूसरी बात है, बारिशें बरसाने वाला, युनज़्ज़िलुल गैस, शुरा 28। आज आप देखिए साइंटिफिक तरक्की के नाम पे लोग पूरी कोशिशों में बारिश बरसाएं। चलिए मेरा एक ही सवाल है कि बारिश बरसा सकते हैं तो होती बारिश को रोक भी तो सकते हैं ना। अगर आज आप ये दावा करते हैं कि बारिश मैं बरसा सकता हूँ या फलां बरसा सकता है, तो एक दिन जब इतनी बारिश है कि सैलाब आ रहे हैं तो उसको रोकिए। जिसको गाड़ी चलानी आती है उसको रोकनी भी तो आती है ना। फिर इसी तरह से आप देखिए कि असबाब पैदा करने वाला, शूरा 33 में आता है, ई यशा युस्किने रीहा फ़यज़लना रवा की दाला जहरी ही। अगर वो चाहे तो हवाओं को बिल्कुल जामत कर दे, रुक जाए सबके जहाज, सारे शिप, सारे टाइटैनिक। और जब अल्लाह ने कोई असबाब पैदा करने होते हैं तो बंदे से पूछता नहीं है। फिर इसी तरह मदद करने वाला, शूरा 46 में हम पढ़ेंगे, वमा कान लहुम मिन औलिया यनसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह, कि जब अल्लाह की पकड़ आई तो बताओ इनके कोई थे नहीं जो इनकी मदद करते। तो सारी बात कंडप इस बात पे करूंगी जो आज से कई साल पहले अल्लामा इकबाल कह के पूरी पोएम है, लेकिन अक्सर मैं इस शेर पे नज़रें जमा कर अपने दिल में इस दर्द को महसूस करती हूँ कि जो के यहाँ मौजूद है। और वो क्या, अपनी उम्मत पर क्यास अक़वाम मगरिब से न कर, कि ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। ये उम्मत बड़ी यूनिक उम्मत है, इसको आप इस तरह से ठोकरों में नहीं डाल सकते। पारे के मरकजी ख्याल के लिए जो आयात मेरे आपके सामने, वो 33 से 35 है सूरह ज़ुख़रुफ़ की, वलौला यकुनन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर ये अंदेशा न होता कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे तो खुदाए रहमान से कुफर करने वालों के घरों की छतें और इनकी सीढ़ियाँ जिनसे वो अपने बाला खानों पर चढ़ते हैं और इनके दरवाजे और इनके तख्त जिन पर वो तकिया लगा कर बैठते हैं सब चांदी और सोने के बनवा देते। ये तो महज हयाते दुनिया की मता है और आखरत तेरे रब के हाँ सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। अल्लाह ताला ने इसमें कितनी बड़ी कमज़ोरी उम्मत मुस्लिमा की ख़ास तौर पे खोल दी कि अल्लाह को तो किसकी परवाह भी नहीं है कि कोई उसको माने ना माने। वो तो दुनिया ऐसे सबको देता है कि तुम भी लो तुम भी लो। हदीस है अल्लाह के नबी की कि दुनिया की हैसियत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी अगर होती तो किसी काफिर को पानी का एक घूंट ना देता। अल्लाह के लिए ये दुनिया इतनी प्रेशियस नहीं है। हाँ, प्रेशियस वो है जो जन्नतों की सूरत में आपके लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा क्यों ना किया कि दुनिया में इनके घर और छतें सोने चांदी की करते, कि फिर तो ईमान वालों का ईमान बिकता। एक जुमला शोर से बोलूँगी, आज मिट्टी और चूने और लकड़ी के घरों पर तो ईमान बिक जाता है कि अल्लाह की नाफरमानियों से उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर बिलफर्ज आप किसी जगह रहते, एक मुसलमान का घर, एक नॉन मुस्लिम का, एक फलां का फलां का, आपका घर मिट्टी चूने का और उसका घर सोने का चांदी का होता तो कितनों का ईमान रहता। ये अल्लाह को पता था, उसने आपको मुझे पैदा किया। तो याद रखिए कि जब इस हद तक मरूबियत होने लगे तो अल्लाह ताला फिर बंदों के ईमान को आजमाता नहीं है। आज हम छोटी छोटी बात पे मरने लगते हैं, देखा था, ये गुनाह था, वहाँ किया था, और जहनों में क्या आता है? मेरे अपने भी जहन में माजरत के साथ कुछ ऐसा ही था। हम जब अपने मुल्कों में रहते, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड में, यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश खास तौर पे, तो हमारे जहनों में वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा हवा होता है। एयरपोर्ट से उतरेंगे, परियां नाच रही होंगी, हूरे होंगी, और वहाँ सोने की ज़मीन, चांदी का आसमान होगा, इल्ला माशाल्लाह, और दरख्तों पे डॉलर्स लगते हैं, और वहाँ तो ये क्या गुण गाते हैं। कभी आप लोगों को जो मरूबियत का शिकार है, कभी तारीफ़ें तो करता देखा करें कि रुहमा बई ना हम की बजाय, आपस में तो शिद्दो है, मुसलमानों के लिए तो कहते हैं इनसे बुरा कोई नहीं आज के दौर में, और दूसरों की बातें देखिए, अच्छी बात सबकी अच्छी होती है। अगर किसी मुल्क में इंसाफ है, मैं उसको नहीं छेड़ रही, किसी गैर मुस्लिम मुल्क में सफाई सुथराई, अदल है, हकूक दिए जा रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रही, ये फैक्ट्स हैं। लेकिन हमें अल्लाह से अभी तक इतनी मोहब्बत ना हुई कि हम उन मुल्कों से इतना सुकून खुशी लेके भी हम उनको अल्लाह की दावत ना दे सके, ये तो खुद गर्जी है। हाउ कैन यू पे बैक योर कंट्री? जिस मुल्क में आप इतने सुकून और इत्मीनान से रहते हैं, आप कहते हैं हम टैक्स देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम छोड़ नहीं सकते, वो ले लेंगे हमसे जो मर्जी कीजिए, लेकिन क्या आपने इतना प्यारा तोहफा दीन इस्लाम को उनको दिया? वमन अहसन कौला मिम्मन दआ इला अल्लाह, की बात पे अमल किया? क्या अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाली हमारी कैफियत है? और जो अल्लाह की तरफ, आप कहते हैं हमें भी खुद नहीं आता, कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए तो आपको आलिम, मुफ्ती और शेख का फतवा नहीं चाहिए। हम कहते हैं कुर्सी में से जाएंगे, माइक सेट होगा, खंगारेंगे, देखेंगे, अच्छा जी आइए अब दर्द शुरू करते हैं, ये मुबल्लिग होते हैं। आप और मैं, हर एक चलता फिरता मुबल्लिग है। जिन जगहों में से गुजरे, आज इसी बात पे अपने आप को कायल कीजिए कि अपने इर्द गिर्द के अंधेरों को हमने इंशाल्लाह ताला रोशनियों में बदलना है, इन लोगों पे रहम करना है, इनको प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, कॉल से, एक तो इस्लाम का हुसन दिखाना है। एंड पे इंशाल्लाह इस फितने से बचने के सॉल्यूशंस में कुछ चीज़ें आपको स्पेशल दिखाऊंगी, अभी कहा तो बात बहुत लंबी होगी, यानी फितना तो समझते हैं बारे की सूरत में, और इसका सॉल्यूशन लेंगे एंड पे। दुआ कर लेते हैं आज के पारे के साथ कि रब्बी जालनी लक शक्कार, अल्ला का जक्कार, अल्ला का रखाबन, लक मितवान, लक मुखबितन, इलई का वाह मुनीबन, रब्बी तकबल तौबती, वक्सिल हौबती, व अजिब दावती, व सब्बित हुज्जती, व सद्दित लिसानी, वाख्दी कल्बी, वस्लुल सही मत सदरी। बहुत ही प्यारी सुपरलेटिव डिग्री है, मुबालगे के सीगे हैं, और इस दुआ को इस सोच से सुनिएगा कि शुक्र का आला तरीन दर्जा आज क्या है और जिक्र का क्या, कि जब तक हम मुसलमानों में से हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा की सूरत में, अपनी अपनी जगह एक छोटा सा जुगनू और एक रोशनी का मीनारा नहीं बन जाता, और दुनिया को इस्लाम की खूबसूरती नहीं दिखाता, और वी आर एम्बेरस्ड मुस्लिम से निकल कर, वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम, वी आर ब्लेस्ड टू बी मुस्लिम की सोच में नहीं आता, तब तक हमने ये दुआ नहीं छोड़नी। सुनिएगा, ऐ मेरे रब, तू मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार बंदा बना ले, अपना बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला बना ले, अपने से बहुत डरने वाला बना ले। ये तो लफ्ज़ है ना, बहुत ये है इस पारे के लिए इस दुआ को चुनना। हम हैं शुक्रगुजार, हम हैं जिक्र करने वाले, हम हैं डरने वाले, लेकिन बहुत होने की ज़रूरत है। अब आखिरी पारों में आपको यही पैगाम मिलेगा, अपनी कोशिशों को तेज़ करो, अपने तकवे को बढ़ाओ, सो रहे हो तो जाग जाओ, जाग रहे हो तो बैठ जाओ, बैठ रहे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो गए हो तो चल पड़ो, चल रहे हो तो दौड़ो, दौड़ रहे हो दीन में तो हांपो कांपो। ये है जक्कारन शक्कारन, और अपनी बहुत ज़्यादा इताअत करने वाला बना दे, और अपने सामने आजिज़ी और फरोतनी करने वाला बना दे, यानी डाउन टू अर्थ कर दे मुझे। आज हमारी कोई अकड़ तो देखे, हमारी गर्दन तो देखे, दुनिया हमें जो मर्जी कहती फिरे, लोगों की मर्जी, मीडिया हमारे बारे में जो मर्जी बोले, हम अपनी नज़रों में देखे कितने बड़े, एक एक फंक्शन और एक एक पहनावा हमारा हमारी खुद नुमाई को जाहिर करे, फिर हम कहते हैं कि अल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ झुकने वाला बना दे, मेरे गुनाह धो दे, फिर आप देखिए अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हम बनने की दुआएं करते हैं, फिर हम कहते हैं अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर, हमारे गुनाह धो दे, हमारी दुआएं कबूल कर, और मेरी हुज्जत को साबित और ठोस बना दे। मैं जहाँ लोगों से बात करूँ, ख़ास तौर पर अल्लाह की तरफ जोड़ने की, तो मेरी बात उनके दिल में चली जाए, और मेरी ज़ुबान को ठीक बात कहने वाली बना दे। अल्लाह अकबर, ये हैंकी पैंकी बातें, कच्ची पक्की बातें, याद रखिए ये बातें इस बात की गम्माज है कि इस्तकामत नहीं है, अमल बोलता है, जुरत बोलती है। जिस बच्चे ने काम किया तो कहता है यस मैम, और दूसरा कहता है बस ऊँ, मैं समझे ये जो ऊँ करना है ना, इसको ख़त्म करना है, हाँ मगर एक्चुअली, और एक क्राइटेरियन अपने लिए ले लीजिए, टेस्टर है ये, कितनी दफ़ा बात सीधी कर जाती हूँ, और कितनी ये जो ऊँ होता है, ख़ास दीन सिखाने वाला का ऊँ, ये वो गड़बड़ होती है अमल की। अला सीधी सीधी ठीक बात कहूँ, तीर निशाने पे लगता है ऐसे मेरी बात हो, कोई मान ले तो ठीक है, नहीं जैसे डॉक्टर ये नहीं कहता कि अब दवा मैं मीठी दूँ कड़वी दूँ, अल्लाह वो दवा मेरे हाथ से दिला जो मरीज़ को ठीक कर दे, मेरे दिल को हिदायत फरमा, मेरे सीने से खोट कीना हसद निकाल दे। तिरमिज़ी की रिवायत है 3551। वाकई ये दुआ याद करने के काबिल, अगर अभी ना भी याद हो सके तो कोई बात नहीं, रख लीजिए इसको अपनी लिस्ट में, देख के पढ़ते जाइए, दिन में एक बार पढ़ लें, हफ्ते में एक बार पढ़ लें, लेकिन शऊर के साथ पढ़ें। और आज के पारे के थीम के साथ अल्लाह के नबी की जो हदीस बिल्कुल ऐसे मैच होती है जिसको आप कह सकते हैं कि वो पजल्स में एक पजल दूसरे के साथ जाता है, तस्वीर पूरी हो जाती है। और हदीस है बुखारी की 7320। आपने फरमाया, तुम अपने से पहली उम्मतों की एक एक बालिश्त और एक एक गज़ में इत्तबा करोगे, यहाँ तक कि अगर वो किसी घो, एक छोटा सा जैसे गुलहरी टाइप का जानवर होता है, किसी घो के सुराख में दाखिल हुए होंगे तो तुम इसमें भी इनकी इत्तबा करोगे। और इससे भी सख्त लफ्ज़ थे जो मैंने नहीं लिखे इधर, वो आप ख़ुद पढ़ लीजिए। बहुत ऑकवर्ड बात है इसके आगे कि अगर वो अपनी माँ के साथ भी कुछ ऐसा मामला करें तो तुम भी वही करोगे। एक हदीस में आता है जैसे जूता जूते के मिसल है ना, यानी राइट फुट लेफ्ट फुट के बराबर होता है, इस तरह तुम उनके कदम ब कदम चलोगे। जब ऐसी बातें सहाबा ने सुनी तो पूछा, अल्लाह के नबी क्या यहूद और नसारा मुराद है? आपने फरमाया, और कौन, यानी मरूबियत तो हमारे जहनों में इन्हीं की है, इल्ला माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस सारी मरूबियत को सही तरह पे हक में डाल दे, और यही चीज़ इंशाल्लाह हमारे अंदर आजजी ले आए, और हम फिर सब्र की आला तरीन किस्म यानी इस्तकामत पे जमें, और हमारी ज़ुबानें पुरअसर हों, और हम अपने अखलाक की गवाहियाँ देते हुए लोगों को इस प्यारे इस्लाम से, प्यारे दीन और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से जोड़ सके। पारे की झलकियाँ लीजिएगा, गौर व फिक्र करना सीखेंगे, और ख़ास तौर पर फिर लेसन क्रिएट करना, लोगों को खबरदार करना सीखना है, अल्लाह को अपना रब बनाना है, नेक अमल करने हैं। मुझे पता है आप सुनते भी नहीं होंगे, आप कहते होंगे चलो ये लिस्ट कौन सी, हमें कोई लंबी बात है, रोज़ वही बातें होती हैं। हालांकि आप देखिए कि हर पारे के अंदर से जो जेम्स निकलते हैं ना, सिर्फ अगर वही मेरे आपके गौर व फिक्र और तदब्बर के नुक्ते बन जाएँ तो हमारी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरतियाँ आ सकती हैं। हम बस दफ़ा अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत जानते हैं और कम जानते हैं, हम सबसे कम जिसको आज के दौर में जानते हैं ना वो हम खुद हैं। इसलिए आज इस फितने को अपने अंदर ढूंढने के लिए हमें गौर व फिक्र करना है। आप मैं इस चीज़ से इतने लिए दुआ करेंगे कि मालिक हमें इस बारे से पूरा फ़ायदा उठाने वाला बना दे, फिर इसी तरह नेक अमल करते हुए अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करना सीखेंगे, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, अल्लाह ताला की किताब को समझना, और फिर ये हकीकत एक बार हमें इस बारे में मिलेगी कि हमें एक रोज़ अपने रब की तरफ पलटना, एक दफ़ा फिर जाएंगे उसकी तरफ, किताब को मजबूती से पकड़ना, अल्लाह की तरफ रजू करना, कुरान पाक को मजबूती से थामना, और पिछले लोगों के हालात से सबक लेना, अल्लाह से डर कर रहना, फरमाबरदार बनकर रहना, और अब पर यकीन करना सीखेंगे, और फैसले के दिन कामयाब होने के लिए ज़िंदगी गुजारनी है। आज दुनिया में जितने मर्जी कामयाब हो जाएं, अगर वहाँ नाकाम हुए तो क्या बनेगा? इसी तरह तकवा की ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करना, हालात व वाक़ियात से सबक लेते लेते जो आखिरी बात गौर करेंगे वो क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी के धोखे से बचना है। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए आसान करे। आइए तर्जमा शुरू करते हैं। हामीम सजदा आयत नंबर 47 से, तरतीब के एतबार से 41 नंबर सूरत है, और अब इसकी हम 47 से 54 यानी लास्ट आयतें पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد المصحى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدعو إلا بعلمي। क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है, और जो जो फल अपने शगुफों से निकलते हैं, और जो मादा हमल से होती है, और जो बच्चे वो जनती है, सब का इल्म उसे है, यानी उसका इल्म कुल्ली है। और जिस दिन अल्लाह ताला इन मुशरिकों को बुलाकर दरियाफ़ फरमाएगा मेरे शरीक कहाँ है, वो जवाब देंगे हमने तो तुझे कह सुनाया कि हम में से तो कोई इसका गवाह नहीं। क्या पता चला कि आज साइंस के नाम पर हम इतने मारूब हुए कि बास दफा हम दूसरों से पूछते हैं क़यामत कब आएगी। अल्लाह ताला कहता है नहीं, तो तरक्की के नाम पे जो मरूबियत है अगर आप उसको देखिए तो आपको इससे क्या पता चला कि हर आने वाली चीज़ क़यामत समेत अल्लाह को पता है। आज दुनियावी उलूम बग़ैर ईमान के जब हासिल किए तो सरी गुमराहियों में पड़ गए। कैसे? आपको शायद मालूम है कि नहीं, तारीख में एक ऐसा शख्स गुजरा, साइंस से उसका ताल्लुक़ था, बहुत रिसर्च के बाद चांद जैसी एक चमकती हुई चीज़ बना ली, जो ही चांद नुमा एक चमकता हुआ गोला उसने पेश किया, उसके बाद वो खुदाई का दावेदार हो गया, मुर्तद हो गया। तो याद रखिए कि साइंस की तरक्की के नाम पर हम ये सब कुछ जो इस बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभी भी देखिए रूट टू फ्रूट, सीड टू फ्रूट कौन करता है? अकल में आती है बात? नहीं आती। माँ के पेट में जो बच्चे की तख्लीक और उसके बाद के मराहल हैं, आज भी साइंस कई जगह पे खामोश है। तो क्या पता चला कि तरक्की के नाम पर मरूबियत का फितना क्या है, कि हम दुनियावी तालीम लेते हुए तो इतना आगे चले जाएं, लेकिन हम अल्लाह के बारे में बेसिक भी ना जाने। फिर आप देखिए कि मेडिकल साइंस बच्चे की जिंस बता सकती है, तकदीर नहीं बता सकती कि उसका नसीब कैसा है। दुनियावी इलूम से बेहतर मेयार ज़िंदगी तो मुमकिन है, लेकिन मेयार आखरत बेहतर नहीं होगा जब तक के दुनिया के साथ दीन का इल्म ना हो। देखिए इस्लाम दुनिया के इल्म पे कुछ भी नहीं कहता, मत सोचिए क्या पढ़ना नहीं लिखना नहीं, सिर्फ उसके ऊपर नहीं रहना। और इसी तरह देखिए महज दुनियावी उलूम पे इन्हिसार करना, ये भी यहाँ एक शिर्क की सूरत है। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, सुनाओ क्या क्या करके आए? और ये जिन जिन की परस्तिश इससे पहले किया करते थे, वो इनकी निगाहों से गुम हो गए और उन्होंने ये समझ लिया कि अब इनके लिए कोई बचाव नहीं। भलाई के मांगने से इंसान थकता नहीं, और अगर इसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। आज भी देख लीजिए बहुत सारे मुसलमान डिप्रेशन में, कभी आपने ये लफ्ज़ सुना था? आज मुसलमान परेशान है। क्यों? मुसलमान परेशान नहीं होते, मुसलमान दुखी नहीं होते, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का रोब होता है। और ख़ास तौर पे इस पूरे पारे में जहाँ भी कायनात की कोई आयत आएगी ना, जैसे अभी भी आई, फलों का फटना, केले को छीलिए, अनार को देखिए, तरबूज को फाड़ कर देखिए, तो बोलिए कि अल्लाह मैं तुझसे मरूब हूँ। और मरूब लफ्ज़ को खो लीजिए, मफूल का वजन है रोब से, अल्लाह के रूप में खुद को पाइए। प्रेशर लेना है, एक ही मुसलमान जिसका प्रेशर ले सकता है वो अल्लाह है। अल्लाह की नाराज़गी का, अल्लाह की खुशी का, ये इंसेंटिव्स हैं। हम दुनिया के प्रेशर में आके न जाने अल्लाह ताला को कहाँ नाराज़ कर देते हैं। फरमाया जो मुसीबत इसे पहुँच चुकी है, इसके बाद अगर हम इसे किसी रहमत का मज़ा चखाएं तो वो कह उठता है कि इसका तो मैं हकदार ही था, और मैं तो ख्याल नहीं कर सकता कि क़यामत कायम होगी। और अगर मैं अपने रब के पास वापस किया गया तो भी यकीनन मेरे लिए इसके पास बेहतरी है। यकीनन हम इन मुनकरीन को इनके अमाल से ख़बरदार करेंगे और इन्हें सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे। और जब हम इंसान पर अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और किनारा कश हो जाता है, और जब इसे मुसीबत पड़ती है तो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। आप कह दीजिए, भला ये तो बताओ, अगर ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ हो, फिर तुमने इसे ना माना, बस इससे बढ़कर बहकाव और कौन होगा जो मुखालफत में हक से दूर चला जाए। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्टाइल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में एक मारूफ वाक्य आता है कि एक दफ़ा किसी गैर मुस्लिम, यानी ऑफकोर्स मक्का में जो मुशरिकीन थे, उनमें से किसी ने कहा कि तुम मुसलमान कितने ना समझो, एक अनदेखी आखरत की खातिर अपनी दुनिया ख़राब करते हो, ना मौज ना मस्ती ना फन ना फ्रॉलिक, हम मौजें कर रहे हैं। तो हज़रत अली का जुमला सुनिए, बिल्कुल आयत 52 में जो जुमला है ना उसी से मिलता हुआ है। कहने लगे, भाई अगर हम दुनिया में कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई बात नहीं, ना आए आखरत, ना आए क़यामत, ना मिले बदले, लेकिन किसी का फ़ायदा तो हो ही जाता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा काम करके हमें दुनिया में खुशी मिलती है। लेकिन तुम एक बात तो बताओ, बिलफर्ज़ अगर मेरा अकीदा ठीक है कि मरने के बाद जीने और सारी ज़िंदगी के मामलात खुलने हैं, बिलफर्ज़ चले जिसको अपनी ज़ुबान में आप कहे कि 1% ही सही, तुम ये मान लो कि अगर मेरा अकीदा ठीक हुआ तो तुम्हारे साथ कल क्या होगा? बात में इतनी दलील थी कि कांप गया और मुसलमान हो गया। तो याद रखिए इसकी ज़रूरत है, मरूबियत से निकलने वालों की तबलीग में झोल नहीं होता, वो बहसों में नहीं पड़ते, वो कॉन्ट्राडिक्टरी इश्यूज़ को नहीं छेड़ते, वो ऐसे जुमले जो बदनाम कर दिए गए दीन के नाम पे वो नहीं बोलते, लेकिन लोगों को दलील के मैदान में अपने रब के करीब करते हैं। इसी की दलील देखिए आगे बहुत प्यारी कायनात की निशानियों में एक चीज़, अन करीब हम इन्हें अपनी निशानी आफाक आलम में भी दिखाएंगे और ख़ुद इनके अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि इन पर खुल जाए कि हक यही है। आज इसकी एक निशानी कोरोना वायरस की सूरत में आई हुई है, समझ नहीं आ रही, सर फोड़ रहे हैं, एंकर्स परेशान, और अखबारों के नुमाइंदे और सियासतदान किधर से इसका सिरा जोड़े। हम नहीं कुछ कहते, ना हमारा इससे काम है, लेकिन अल्लाह कहता है हम कभी कभी इंसानों को जिच कर देंगे, पूरा ग्लोब स्टिल हो जाएगा, स्टॉप हेयर। कितना नाश था तरक्कियों पे, कितनी साइंस थी, क्या कुछ थी, CIDs जाकर पता तो करो। लेकिन अल्लाह कभी कभी अपना ऐसे भी वजूद दिखाता है और फिर लोगों को दिखाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह।
कि आपके रब का हर चीज़ से वाकिफ़ हो, आगाह होना काफ़ी नहीं? यकीन जानो कि ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में हैं। याद रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इहाता किए हुए है, तो क्या पता चला कि उसके आगे बड़े ना बनो, उससे मुकाबला करने वाले कभी नहीं जीतेंगे। तो सूरत कांड कितना खूबसूरत है, क्या सीखा हमने कि इल्म इलाही की वसअतें कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर इंसान की सरकशी का हाल सीखा और आखिर में कुरान करीम के सच होने के दलाइल देखे। क्या करें, कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ मजबूत कर लें, यही ज़रिया निजात है। अभी तक आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज 25वां फितना तो पारे के टॉपिक के साथ देखा है, और आप नोट करते होंगे हर पारे में दो चार छोटे छोटे फितने जो पूरे अब फिट नहीं हो पा रहे या उससे रेलिवेंट हैं वो भी शेयर किए गए। यानी कम अज़ कम 35+ फितने अभी तक आपसे शेयर हुए हैं इस दौरे कुरान में। हर दिन के पारे के बाद लोग कहते हैं लगा आज ही सबसे बड़ा पारा था, आज ही सबसे बड़ा फितना था। इसमें झूठ नहीं है, कुरान का हर लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, लेकिन साथ ही साथ सोचे करें क्या। एक माँ कहने लगी मेरे बच्चों के बच्चे बड़े होंगे तो क्या होगा, हाय फिर ये बेबी जब भी पैदा हुआ है, फिर जब ये बड़ा होगा फिर और भी दज्जाल करीब होगा, फिर और भी दुनिया में और याजूज माजूज दिस एंड दैट। उसका जवाब ले लीजिए, कुरान और सुन्नत से मजबूत ताल्लुक कायम कर दीजिए आज अपने बच्चों का। कल बड़े होंगे, इनकी खुशियाँ गम, इनका जीना मरना, इनकी पढ़ाई लिखाई अल्लाह के हुक्म से कीजिए। आप इस्तकामत का पहाड़ बनकर दिखाइए अपने बच्चों को, ऐसी ठुकी हुई मोहरें बने कि आप देखिए कील खुद कच्चा हो तो एक घड़ी भी नहीं आप टांकेंगे उस पर। वो कील, वो खूंटी जिस पे भैंस बांधनी थी, वो खूंटी कच्ची है तो भैंस भी जाएगी, कील भी जाएगा, रस्सी भी भाग जाएगी उसकी गर्दन में साथ साथ। आप ठुकिए, माँ बाप को इस वक्त जितना ठुकने की ज़रूरत है आप इसको समझिए कि देखिए जहाज़ में बैठते हैं थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं सीट बेल्ट खोल लीजिए, लेकिन ज़रा कभी जहाज़ में स्लम्प आता है, एयर गैप्स आते हैं, बबल्स आते हैं, वो कहते हैं सीट बेल्ट बांध लीजिए। जब झटके आते हैं, जब फितने आते हैं, जब आजमाइशें आती हैं, तो जहाज़ में बैठा तो सीट बेल्ट लगाता है, बस में खड़ा शख्स भी ऊपर से लूप को पकड़ लेता है। आज के माँ बाप, आप सबको कहूँगी, स्पेशली जिनकी गोदों में दो दो चार चार साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चे हैं, आज जितनी जल्दी कुरान सुन्नत से अपने ताल्लुक को मजबूत करेंगे, आपकी नस्लों में तो इंशाल्लाह वो सिद्दीक हैं जो अपने दौर के सिद्दीक होने हैं, आपकी नस्लों में अपने दौर के फारूक होंगे जो उस दौर के फारूक होंगे। याद रखिए आखिरी वक्त तक एक गिरोह हक पे रहेगा, इस्तकामत वाला, जमा हुआ ठुका हुआ। आप अपने बच्चे इस सोच के साथ पालिए कि इंशाल्लाह इन्होंने उन फितनों के आगे दीवार बनना है, और होगा, वल्लाही होगा, घबराइए नहीं, मायूसी की जरूरत नहीं कि अब हम बच्चे ना पैदा करें, ना ही हो बच्चे, खा पी जाए, ख़त्म ही हो जाए, नहीं। करना क्या कि दुनिया की चकाचौंध में खोकर मकसद हयात नहीं भूलना। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, जैसे आप होंगे वैसे वो होंगे। जब हम इन चीज़ों में खो जाते हैं ना, प्रेशर नहीं ले पाते। ये भी जुमला लिखिए कि अल्लाह को सिर्फ मुसीबतों ही में नहीं पुकारना, खुशियों में भी पुकारना है। और जब ज़िंदगी में कोई प्रेशर आए तो क्या करना है, आप देखिए कि एक औरत जो बिल्कुल बच्चे को पैदा करने के करीब है, डिलीवरी पेंस, जितना वक्त कम रहता जाता है पेंस बढ़ते हैं, लोग कहते हैं कोई बात नहीं और हिम्मत करो और हिम्मत करो, कोई इस वक्त उसको कहते नहीं रिलैक्स हो जाओ छोड़ दो तो बेबी तो नहीं पैदा होगा ना। सबको पता है आज ये बात, आज के दौर में मुसलमानों पे जितना प्रेशर बढ़े, जितने इल्ज़ाम बढ़े, जो भी है उतना प्रेशर और लीजिए और कीजिए, हिम्मत कीजिए, जोर लगाइए। आपने देखा होगा कि तितली जब अपने खिखान में से निकलती है ना तो बहुत जोर लगाती है। एक शख्स देख रहा था तितली के बच्चे को, वो जैसे अंडे के छिलके में से निकलते हुए, उसको बड़ा रहम आया कि हाय बेचारी इतनी मुश्किल में है, उसने छिलका तोड़ दिया, उसने तो नेकी की ना। लेकिन आपको पता कि वो क्या हुआ, वो तितली उड़ नहीं सकी, हैंडीकैप हो गई, अपाहज थी। क्यों? कि जब वो खिखान में से निकलने के लिए पर फड़फड़ाती है और स्क्वीज होकर उस सुराख में से निकलती है ना, तो उसके अंदर एक जल जो होता है, जो उसकी पैदाइश से पहले के लिए उसकी ज़रूरत थी, वो सब नुचड़ जाता है। हल्की फुल्की होकर बाहर निकलती है, थोड़ी देर में पर झाड़ती है, उड़ जाती है। तो फितरत की बात याद रखिए, पीयर प्रेशर लेना है मगर दीन पे अमल करने का, मरूब होना है मगर अल्लाह से और उसकी शरीयत से और उसके दिए हुए दीन से। मैं तो हर वक्त सोचती रहती हूँ अल्लाह आपका आसमान कितना प्यारा है, अल्लाह मैं मरूब हो गई, अल्लाह ताला आपके दरख्त कितने प्यारे हैं, आपके बादल कितने प्यारे, अल्लाह ताला मैं आज फिर इम्प्रेस हो गई आपसे। यानी लफ्ज़ मरूबियत मुश्किल लगे तो इम्प्रेस कर लीजिए, अल्लाह से इम्प्रेस हूँ। तो मैं जब कुरान पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह ऐसा कलाम कोई दे ही नहीं सकता, ये मैं इससे भी इम्प्रेस हूँ। छोटे से बच्चे को देखिए क्या प्यारे प्यारे बटनों जैसी आंखें पिट पिट करती हुई उसकी आप देखे पलके, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मैं आपसे इम्प्रेस हो गई हूँ। कायनात पे गौर कीजिए और कुरान पे गौर कीजिए और मुश्किलात में जम जाइए। بعض دفعہ اللہ ہمیں کوئی بہت بڑی خیر دینا چاہتا ہے، لیکن ہمارے پیارے، ہمارے دشمن نما دوست، کہ جن کے لیے شاید کسی نے کبھی کہا ہوگا کہ آپ جیسے دوستوں کے ہوتے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے، وہ ہمیں کسی مشکل میں دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی دین پہ عمل کرنے کے بعد آئی کہتے ہیں، نہ نہ چھوڑ دو، نہ 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 میاں شادی کر لیں گے دوسری، نہ پھر فیملی ناراض ہوگی، نہ نہ پھر اس ملک میں لیگل نہیں رہو گے، نہ نہ لکھ لیجئے، جب کوئی اپنا ہی ہمیں کسی دین پہ عمل کرنے کے بدلے میں ہٹنے کا، رکنے کا موقع دے، تو مان لیجئے وہ آپ کا دشمن ہے، لیتھل ہے یہ آپ کے ایمان کے لیے۔ اللہ آپ کو مشکلات میں ڈالتا پتہ کیوں ہے؟ آپ کو کوئی بہت بڑی خیر دینا چاہتا ہے۔ نہ جانے اللہ نے آپ کے لیے کیا کچھ رکھا پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی تک آپ ہمت نہیں کر پا رہے، آپ نے ابھی کمر نہیں کسی، ابھی آپ وقت کی کمی کا شکار، پیسے کی کمی کا شکار، خاندان کے پریشر میں ہیں۔ ہر پریشر تو ہم مسلمانوں پہ پڑتا ہے اس وقت جب اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے۔ کسی کو کبھی کمپرومائز کرنے کا حکم نہ دیجئے۔ حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں ریت پہ تڑپتا دیکھتے تھے، کوئلوں پہ لٹایا دیکھتے تھے، ایک جملہ اللہ کے نبی کا لا کے کوئی دکھا دے، کہہ دیو کہ یہ بلال چھوڑ دے سب کچھ، اللہ کو تیرا پتہ ہے۔ صبر اللہ علیہ یاسر، اے یاسر کے گھر والوں، میں تمہیں صبر کا حکم دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، انی معدکم الجنہ، تو دین کے راستے کی مشکلات جب آئیں تو اس پہ جم جائیے، یہ ہے اس مروبیت سے نکلنے کا راستہ۔ کہتے ہیں نا کہ ڈارک اسٹار از بیفور ڈان، صبح ہونے سے پہلے رات ہی ایک دم بڑی گہری ہوتی ہے۔ تو آج آپ کو مجھے اس کتاب کو ہم کرنا ہے، داعی دین بنیے، خود قرآن سے جڑیے، اور جدید سائنسی علوم سے ایمان کو بڑھائیے۔ کوئی ایک بچہ آپ کا اتنا انٹلیکچوئل ہو جائے کہ لیب میں کھڑا ایسڈس کو ادھر ادھر کرتا دے کر لوگوں کو تبلیغ کر دے کہ لک ایٹ دس، اور فزکس پڑھتے ہوئے کائنات کے راز کھول دے، اپنے بچوں کو تیار کیجئے ان چیزوں کے لیے، اور کسی اور موضوع پہ بھی ان کو بولنے کی اجازت نہیں جب تک اللہ کی بات ان کو سمجھنا ہے۔ لوگوں کو رب سے جوڑیے، اور یاد رکھیے کہ معاشرے میں گناہ جو ہوتے ہیں نا، یہ زہریلے اثرات دیتے ہیں، ٹاکسک ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ڈی ٹاکسس بنائیے، ایسے خوبصورت طریقے سے تربیت کریں، اور سارا خاندان آپ کو اور طرف، آپ کے بھائیوں کے بچے، دیوروں کے، جٹھانیوں کے، نندوں کے، کیونکہ آپ کے بچوں نے بالآخر آپ کو ان سے ہی جوڑنا ہے۔ آپ بڑی سختی کرتے ہیں، ماما آپ تو ایسی ہیں، بابا آپ تو یہ ہیں، اسپیشلی اپنے بچوں کو اپنے دوست بنا لیجئے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ نسل تیار ہوگی جس نے آنے والے دور میں اسلام کو امبیرسڈ مسلم سے نجات دلا کر وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم کا لقب دینا۔ جب تک آپ کو مجھے خود نہیں یقین تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جو کھلاڑی گھر سے ہی ہارنے کی نیت لے کر جائے اس کو کون جتائے گا؟ آج ہم ہارے ہوئے مسلم ہیں، جو ہی سوچتے ہیں اپنے بارے میں کوئی کہتے خرابی ہونا ہے، دیسی اسٹور میں جائیں گے کوئی لائن نہیں بنے گی، آپ امریکن اسٹور میں کھڑے ہیں، آپ نارویجن اسٹور میں کھڑے ہیں، آپ برٹش اسٹور میں کھڑے ہیں، آپ ان کی باتیں بھی مانیں گے، آپ ان کی ٹرالیز کو بھی جگہ پہ رکھیں گے، ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ہم اتنے امپریسڈ ہیں، ہم ان کے اسٹورز میں جاتے ہیں، ہمارے اور اصول ادھر آتے ہیں، اور ایئرپورٹ سے ہی جا کے دیکھیے ذرا اپنے ملکوں میں اترتے ہی لائنیں کدھر جاتی ہیں ہماری، یہ امپریشن ہے، یہ اصل میں مروبیت ہے۔ دین کے نام پہ رول بنائے، کہتے ہیں بڑے سربن ہیں، آپ کوئی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ دین سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ فارم فل کر دیجئے، یہ رولز ہیں، یہ کیا باتیں ہیں، ہمیں بس جو دل کرے ہمیں کرنے دیجئے، ہم آئیں ہم آئیں نہ آئیں۔ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کورس تو کرنا ہے سبیل الجنہ، لیکن رولز نہیں ماننے، بس ہم اسلام کے ساتھ یہ چاہتے ہیں، کچے ادھورے، ڈس آرگنائز، ڈیلے ڈھالے، میڈیوکر، ہر بے قاعدگی اسلام کے ساتھ، کیونکہ مروبیت ہے۔ اور آپ بچے کا ذرا کسی بھی بڑا نام لیجئے، بڑے فلاں فلاں اسکول سے بچہ پڑھ کے آیا، کہتے ہیں اتنے سخت ہیں، بچے کے شوز نہیں تھے، وہ سینڈلس میں چلا گیا، گھر واپس بھیج دیا، ماشاء اللہ، واہ واہ، لوگ کہتے ہیں ہائے تم کتنے خوش قسمت ہو، جیسے پیچھے فرشتے دعائیں دے رہے تھے۔ تو ساری بات کا خلاصہ لیجئے کہ آج کے بعد آپ نے، میں نے شرمندہ نہیں ہونا، اپنے آپ کو سیدھا رکھیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 52-54 میں ہم نے ولایت کی بات دیکھی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ولایت کا تعلق کیوں نہیں رکھنا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جو ہم نے بچپن سے جملہ سنا کہ نیچے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ، اس کا فرق، جس کا ہاتھ اوپر ہوگا نا وہ آپ پہ اپنے روپ ڈالے گا۔ جب آپ غیروں سے مدد لیں گے تو وہ آپ سے اپنے رولز بنوائیں گے، وہ آپ کی پالیسیز چینج کرائیں گے، آپ کے ملک کے قانون ان کے چلتے ہیں، ایسٹس آپ کے ہیں، اون کوئی اور کرے، یہ ہوا آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو آپ جب اللہ سے لے کے کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم کسی کا کھاتے ہیں، کوئی جو کسی سے لیتا نہیں اس کو کیا پرواہ ہے کہ میں ان کی مرضی کی بات کروں، اس کو تو حق لینا ہے نا۔ تو آج بھی بالکل اسی طرح سے ہم جب رزق اللہ کی بجائے بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں نا، تو پھر ہم انہی کے ساتھ چل پڑتے ہیں، और इस तरह से आज भी आप देखिए पूरी पूरी मोनोपोलीज है दुनिया में। ये तो अब एक एक टॉपिक बड़ा अहम है, लेकिन बस इस वक्त चंद जुमले लिख लीजिए। गैर मुस्लिम अंबिया फरिश्तों कुरान मसाजिद और अहले ईमान के दुश्मन और मुखालिफ हैं, इनकी दुश्मनी खुली पड़ रही है देख लीजिए। और इसी तरह बहके हुए हैं, इनके जरायम संगीन है, आमाले सही है, इस तरह अजायम अच्छे नहीं है। ऐसे लोग मुसलमानों को हटा कर हक से अपने जैसा करना चाहते हैं। और इस्लाम और गैर मुस्लिम दो मुख्तलिफ तरीके, दो कौमी नज़रिया आज फिर दोहरा लीजिए। उनका मकसद तरीका ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल अंजाम बिल्कुल मुसलमानों से फ़र्क है। हम जब उनके जूतों में पाँव डालते हैं तो हम परेशान होते हैं। याद रखिए कि ऐसे लोग मुसलमानों को गुमराह और ख़ुद को हक पर समझते हैं, ये सोच की खराबी है। निशानियों से सबक नहीं लेते। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इन चीज़ों को आसान करे। अब चलेंगे आगे सूरत शूरा। हकीकत में अगर आप इस्लाम से मरूब होना चाहते हैं ना, व्हाट इस्लाम इज़, तो सूरह शूरा पढ़ लें। खूबसूरत तरीके से कानून साजी और मुल्क को चलाने का तरीका, किसी इदारे को चलाने का तरीका, एक स्टोर को चलाने का तरीका, यानी मुस्लिम्स को ऑर्गेनाइज करने वाली ये सूरत है, अगर शर्त है कि हम इस पे गौर व फिक्र करते रहें। 42 नंबर की सूरत है, 53 आयतें हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम आइन सीन कौफ। नोट कीजिए इसकी खूबी कि इसकी दो मुस्तकिल आयतें हरूफ मुकत्तात हैं। अमूमन एक ही आयत कभी लंबी होती है कभी छोटी, लेकिन इसकी एक यूनिक चीज़ है और हामीम से शुरू होने वाली सूरतों में से सूरत है। और इस सूरत में एक लफ्ज़ वही, ये आपके मेरे सामने जो है रेवलेशन, अल्लाह का ये कलाम, इसका बहुत जिक्र है। वही कैसे आती थी अल्लाह के नबी पे, उसके क्या तरीके थे, वो सब कुछ आप इसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कज़ालिक यूही इलैका वइलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह महसूस करें दिल पे, जो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है, इसी तरह तेरी तरफ और तुझसे अगलों की तरफ वही भेजता रहा। ये होता है अल्लाह का प्लान, वही के ज़रिए उम्मतों को गाइड करता है। जैसे आज कानून साजी होती है ना, तो वही के ज़रिए से दुनिया में जीने मरने के तरीके सिखाए जाते हैं। आज बहुत सारे लोग इसी किस्म की चीज़ों में हैं, उनको लगता क्या है कि इस दुनिया में रहकर कामयाब होना है तो गैरों से तरीके ले लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को बता दो कि ज़िंदगी गुजारने का जो बेहतरीन तरीका अल्लाह सिखाता है उसको लेना है, तो इस वही के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लो। आसमानों की तमाम चीज़ें और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, वो बरतर और अजीम शान है। करीब आसमान ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। रुकिए, फिर दोबारा आसमान वालों का ताल्लुक़ ज़मीन वालों से जुड़ रहा है। खूब समझ लो कि अल्लाह ताला ही माफ़ फरमाने वाले और रहमत वाले हैं। यानी अल्लाह की शान कितनी है कि इंसानों में जब वो खैर देखते हैं तो कुछ फरिश्तों को लगाकर कहते हैं, जाओ तुम इनके लिए दुआएं करो। कौन? जो बख्शिश मांगते हैं। फरिश्ते आपके लिए बख्शिश की दुआ करें, इससे बड़ी खुशकिस्मती है। तो इस्तकामत पे जमिए, अपने आप को मुसलमान कहकर खुश होइए। आज के बाद अपने दिलों से सारा रोब उतार दीजिए। देखिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो फातेह बैतुल मक़दस बन के जा रहे हैं और ग़ुलाम सवारी पे और आप पैदल हैं। बारी लगा ली थी रास्ते में कि तू भी इंसान है, मैं बैठूंगा सवारी पे और तू चले, ये कैसे हो सकता है इतना लंबा सफ़र। अल्लाह का हुक्म देखिए कि जूं ही वहां पहुंचे जहां पहुंचना था, और उस वक़्त की बड़ी बड़ी ताकतें इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं कि आज वो कौन है देखें जिसने इतने सालों के बाद बैतुल मक़दस को आज़ाद कराया। और उमर सवारी से नीचे, गुलाम कहता है कि मैं अपनी जान की पनाह मांग रहा हूँ, आप सवारी पे आ जाइए, मुझे नीचे आने दें, मुझे शर्म आ रही है, लोग क्या कहेंगे। कहा, खबरदार बारी तेरी है और मैं बैठ गया, कल क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। कहा, उमर साहब कपड़े तो बदल लीजिए, ये अपनी टोन में बता रही हूँ, उन्होंने तो ऐसे नहीं कहा होगा। कुछ अच्छे कपड़े पहन ले, इतने बादशाह वजीर मसीर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आए हुए हैं। कहा, क्यों? जिन कपड़ों में अपने मालिक के सामने जाता हूँ तो मुझे किसी के सामने आने में क्या। देखिए ये मरूबियत ना होने की दलील है। वो लोग थे कि जब गैरों के सामने जाते थे दूसरे मुल्कों में, अपना सर उठाकर चलते थे। एक हुक्मरान ने मुसलमानों के लीडर को बेइज्जत करने के लिए उसके सर पे मट्टी का एक टुकड़ा रखा दिया। मुराद यह था कि इनको जलील करें, शर्मिंदा करें, सर पे मट्टी लेकर खुशी खुशी उसको देकर कहते हैं, शुक्रिया आपका, आपने तो बगैर मेहनत के अपने मुल्क की जमीन हमें दे दी। ये मरूबियत ना होने की दलाल। 101 मिसालें मैं आपको तारीख की लिखा सकती हूँ अल्लाह के हुक्म से। और बच्चों को पढ़ाइए, अपनी हिस्ट्री से जोड़िए, सहाबा के किस्से पढ़ाइए, साद बिन वक्कास पढ़िए, कैसे फ़ातह मिस्र हुए, कैसे कि उस दौर की बड़ी बड़ी ताकतों को कॉन्कर किया था उमर फारूक और उनके बाद के लोगों ने, मरूब नहीं थे। आज हम रोब में, इसलिए आप बताइए कहाँ गया इस्लाम, किस मुल्क को आखिर में आपने इस्लाम में ढलते देखा। तो अल्लाह ताला तो अपने काम कर लेता है, लेकिन काम मुझसे कराने हैं, आपसे कराने हैं। और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया, अल्लाह इन पर निगरान है और आप इनके जिम्मेदार नहीं। इस तरह हमने आपकी तरफ अरबी, कुरान की वही की, ताकि आप मक्का वालों को और इसके आसपास के लोगों को खबरदार कर दें। और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं, अरबी में कुरान सीखिए। मैं आप सबको दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अगले साल के दौरे कुरान से पहले कम अज़ कम कुरान का 1/3 समझ आ जाए, और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अंजाम दो में से एक है, एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जहन्नम में होगा। सोचिए मैं किधर होंगी। इस आयत पे भी चंद सेकंड रोक लें, फरीकुम फिल जन्नति व फरीकुम फिस सैर। क्या सिर्फ दुनिया जन्नत बनानी है अपनी और अपनी नस्लों की? आप दुनिया की जन्नत की लाइन में खड़े भी होंगे और अगर दूसरी लाइन वहां चेंज करनी पड़ी तो क्या होगा? तो लफ्ज़ वली को देखिएगा, बार बार आ रहा है सूरत में, तो आप डिक्शनरी में इसके मानी देखें तो दोस्त का भी आता है, वारिस, रोजगार और दौलत देने वाला, रोल मॉडल, रहनुमा, तकलीफ़ों में निजात देने वाला, ज़रूरतें पूरी करने वाला, मुहाफिज, मुरादें बरलाने वाला। एक एक के ऊपर अपने लिए बाद में चंद सेकंड गौर को अपने लिए लिख लें। क्या हम आज अल्लाह के सिवा औरों को ये सब कुछ समझते हैं? दौलतें भी औरों से मांगते हैं, हमारे रोल मॉडल कोई और हो गए, तकलीफें हमारी बाबा जी दूर करते हैं, ज़रूरतें हमारी शेख साहब पूरी करते हैं, हिफाजत हमारी सिक्योरिटी ने करनी। तो याद रखें हमसे मतलूब क्या कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को वली बनाएं। लेकिन आज का फितना गैर अल्लाह और मुनकिरों को वली बनाने का फितना है। अल्लाह ताला सबसे हटाकर हमारी नज़रें अपने ऊपर लगा दे। आप देखिए कि ताल्लुक़ के मुख्तलिफ दर्जे पीछे भी पड़े थे, यहाँ चूंकि बार बार बात आ रही है तो लोग गलत ना समझ जाएं, और हो सकता है कोई सिर्फ आज ही का पारा सुनने आया हो, पहले ना मौका मिला, तो ये ना समझे कि शायद गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुक बिल्कुल नहीं आ सकता। पहला ताल्लुक था मवालात का, जिक्री दोस्ती, जिसको आप बिथाना भी कहें, जैसे कपड़े का अस्तर होता है, ये नाजायज़ है, जिसमें आपके ऊपर उनका असर आने लगे, आप उनके रंग ढंग में आ गए, आपको उनकी चीज़ें अच्छी लगें। हाँ, मदारात कर सकते हैं, ताल्लुक रखिए, खुश अखलाकी से रखिए, कोई इज्तमाही अंदेशा है, कोई ऐसा मामला है, अच्छा रखिए उनसे, आप मुबासात कर सकते हैं, बाहमी हमदर्दी, आपके हमसाए, आप खाना भेज सकते हैं, ले सकते हैं, हलाल चीज़ों के साथ एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो सकती है, लेकिन दिल का गहरा ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला से। फिर आप देखिए कि आयत 7 में अल्लाह ताला ने मक्का की बात की है, लितुनज़िरा उम्मल कुरा। उम्मल कुरा को ज़रा सा आज अपने जहन में लेते, देखिए वहाँ खाना काबा भी है ना, हमारा ये मरकज़ है, किबला भी तो एक मरकज़ है ना, एक यूनिटी के लिए। अल्लाह ने मक्का को मुसलमानों के लिए एक मरकज़ बनाया, इज्तमाईयत का मजहर है, किबला रुख नमाज पढ़ते हैं, इज्तमाईयत की निशानी है, दीन बुनियाद है इस्लामी रिश्ते की, यानी मक्का की जो इस्लाम में और मुसलमानों में हैसियत है इससे कोई मुनकर नहीं है। इसके बरक्स आज हमने नमाज में तो किबला मक्का को बनाया, लेकिन तर्ज़ ज़िंदगी में, तिजारत में, हमारे किबले मगरब और कुछ उससे भी आगे पीछे के मुल्क हो गए। आज के मुसलमानों की ख्वाहिशों का किबला गैर मुस्लिमों की पसंद की चीज़ें हो गया। किबला रूह नमाज पढ़ेंगे तो इज्तमाईयत होगी, मगरब परस्ती मरकज़ से दूरी की दलील बनेगी, दीन बुनियाद इस्लामी रिश्ते की, दीन से दूर होंगे तो गैर मुस्लिम से रिश्ते जुड़ते जाएंगे, हत्ता के विलायत तक के होंगे। मोमिन कहीं भी हो अपने मरकज़ से जुड़ा रहता है। इसके बरक्स आप देखिए कि ख्वाहिश परस्तों का कोई मरकज़ नहीं होता। हकीकी मोमिन रब चाही ज़िंदगी चाहता है, आखरत उसको अल्लाह उसकी पसंद की देगा। इसके बरक्स मगरब ज़दा मुसलमान को ना तो अल्लाह कबूल करता है ना मगरब कबूल करता है। वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, हमें वो चीज़ें जचती भी नहीं, हमने वो भी कर ली, लेकिन आज तक तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया। आपकी मेरी सबसे ज़्यादा कदर अल्लाह ताला ही करता है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन सब को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन जिसे वो चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर देता है, यानी सब एक ही उम्मत को मानने वाले हो जाते। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन सब को एक ही उम्मत का बना देता, लेकिन जिसे वो चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, اور ظالموں کا حامی و مددگار کوئی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے۔ عربی میں دیکھیں گے تو لفظ ولی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے اور جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے جوڑے بنا دیے، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، یعنی اس دنیا میں جی رہے ہو، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آیت 11 کو ہائی لائٹ کیجیے، بڑی پیاری آیت ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے امپریس ہو جائیں، ہم اس سے مرعوب ہو جائیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی تو مثال جیسا کوئی نہیں۔ آج ہم اللہ سے کیوں امپریس نہیں ہوتے؟ اتنا پیارا آسمان دیکھتے امپریس نہیں ہوتے؟ لوگوں کے آرٹیفیشیل چھتے دیکھ کر کہتے واو ہاؤ، چھوٹے سے شینگلیئر بنے ہو کہتے کہاں سے بنا ہے، کس کمپنی کا، ذرا بتانا کہاں سے ملتا ہے، اور آسمان پہ روز جو ہزاروں لاکھوں ستارے بنائے کرے، اس سے کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف وحی کا سلسلہ ہے، دوسری طرف کائنات پہ غور ہے۔ سائنس پڑھو لیکن اللہ کی محبت کی گلاسز کے ساتھ۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرقین پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کی مروبیت، اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، یعنی اس کو چن لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ آج دیکھیے کہ پیسے والوں کی کمی نہیں ہے، آج معاشرے میں علم والوں کی کمی ہے۔ آج جس نے علم لیا، علم دیا اور علم کی خدمت کی اور علم پہ خرچ کیا، بہت جلد دنیا اس کو مان لے گی۔ نالج از اے پاور، پیسہ دے کر لوگ نکل جاتے ہیں، علم نہیں لیتے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ یہ صورتیں جو اتنی خوبصورت صورتیں ہیں، ہم تو اس کا حق نہ ادا کر پائیں 2-2.5 گھنٹے میں، تو اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ خاص طور پہ سورہ شورا کو میں دیکھوں نا تو مجھے کانسٹیٹیوشن آف اسلام دکھتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بھی بیان کر رہے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ کا حق صرف اللہ کو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کائنات کے اشاروں کو دکھا کر ہمارے دل بھی مسحور کرتے ہیں اور اللہ میں صحیح رہنمائی کرنے والوں میں ڈال دیں۔ تو سوال لکھیے، آیت 13 کی روشنی میں ہدایت کس کو ملتی ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کو، یونیب کو ملتی ہے۔ یونیب کون ہے؟ منیب اور یونیب، اناب، اواب، یہ سب ملتے جلتے لفظ ہیں، آپ ان پاروں میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ پہلی بات ہے جو بار بار اللہ کی طرف پلٹے، دل ادھر ہی لگے۔ کس کی طرف ماں پلٹتی ہے؟ نیو بورن بیبی کی طرف۔ سوتے کو بھی جا جا کر دیکھ رہی ہوتی ہے، اٹھ تو نہیں گیا، اور بلکہ نہ اٹھے تو پریشان ہوتی، اتنی دیر سے رویا کیوں نہیں، اس نے دودھ نہیں پیا۔ تو جس میں دل لگتا ہے نا، انسان بار بار ادھر جاتا ہے۔ آپ کون سی کتاب بار بار کھولتے ہیں؟ جو پسند ہو۔ فریج کب کھلتی ہے؟ جب اس میں پسند کا کھانا ہو۔ کچن کی طرف کب جاتے ہیں؟ جب خوشبو ہو۔ ایمان والا ہر بار اللہ کی طرف، کبھی استخارے کے لیے، کبھی توبہ کے لیے، کبھی دعا کے لیے، کبھی دکھ سکھ کے لیے۔ اب میں یجیب المضطرہ، تو پوچھئے خود سے کیا میں یونیب ہوں؟ پھر کفر اور شرک سے بچنے والا، کھرج کے نکال دیجیے۔ اس سال کے دورے قرآن کو ہم نے رمضان نجات کا مہینہ، دورے قرآن نجات کے لیے پڑھنا ہے، رسم کے لیے اور عبادت کے لیے نہیں پڑھنا۔ تو اپنے اندر سے کھول کر ایک ایک چیز، اگر کوئی علائش بھی ہے ہلکی سی، اس کو بھی نکال دیں۔ اسی طرح ضد، بحث اور اختلافات سے دور رہ کر توحید پہ جمنے والا بنا دیں، پھر ہدایت ملے گی، اور قرآن سے ہدایت لینے والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو اس سے لینے والا بنا دیں۔ اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد اور بحث ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے سے ہی قرار نہ پا چکی ہوتی، تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی تھی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے گا، کتاب پڑھنے کے بعد پھر اختلافات میں جانا اور امت کو توڑنا، یاد رکھیے، یہ دوسروں سے روپ میں ڈالنا ہے۔ آج لوگ تو آپ کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے برا کہتے ہیں، اور آپ آپس میں ایک دوسرے مسلمان کو برداشت نہ کر سکیں۔ تو اس دین کو سیکھنے کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ دلوں کے شک بھی نکال دے اور دلوں کے بغض کینے دوسروں کے خلاف جو ہیں وہ بھی نکال دیں. بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں. کن کی؟ جن سے مروب ہیں آج مسلمان. اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ تم میں انصاف کرتا رہوں. ہمارا اور تم سب کا پروردگار تو اللہ ہی ہے. ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہی لوٹنے والا بنا دے. کل جائیں گے اللہ کے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون کے جملے کو سننے اور پڑھنے کے بعد تو کیا ملا؟ آج چاہیے, آج پلٹیے. اس وقت امت مسلمہ اگر اللہ سے جڑ جائے اللہ ساری دنیا کے ساتھ ان کو جوڑ دے گا اور دنیا کو ان سے جوڑ دے گا, کیونکہ جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ساری دنیا کے دلوں میں اس کا ڈر ڈال دیتے ہیں, اور جو ایک اللہ سے پیار کرتے ہیں نا اللہ مخلوق کے دل میں اس کا پیار ڈالتے ہیں. اللہ ہم مسلمانوں کو عزت دار مسلمان بنا دے. اور جو لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی اور ان کی خوامخواہ کی حجت اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو بھی اتاری, اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی لگی ہو. یعنی آج چار دنیا کو بنانے کے شوق میں ہو, کیا پتہ قیامت آ جائے. اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے, اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں. سچ ہے نا, جس اسٹوڈنٹ نے امتحان دینا ہوتا ہے وہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے اور کب آنی ہے کب آنے امتحان یہ باتیں وہی کر رہا ہوتا ہے. شاید جس نے کوئی نقل تیار کی ہو اور بس فن اور کھیل ہے اس کے لیے امتحان, بے یقینی ہے اس کو اس بارے میں. خود سے پوچھئے کہ آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہوں ریئلی؟ میرا علم آخرت, میرے فکر آخرت میں ڈھل چکا ہے. انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے. یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے, جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے, اور وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والا ہے. اور اب آگے آخرت کی کھیتیوں کی بات ہے. یاد رکھیے گا مروبیت کے اس فتنے سے مسلمانوں کو نکالنے کی ایک چیز کہ ان کی نظریں اس دنیا کے کھیت سے ہٹا کر آخرت کے کھیت میں لگا دیجئے. جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے. ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. سوچیے گا کیا میں نے آخرت کی کھیتی کو بنجر تو نہیں رکھا ہوا؟ صرف خواہشوں کے ساتھ ہی تو نہیں سوچا ہوا کہ وہاں بیج ڈلتے جائیں گے؟ کھیتی کے ساتھ ہی محنت کا تصور ہے, چیر پھاڑ ہے. مومن کی زندگی جد و جہد کی زندگی ہوگی. وہ اس دنیا میں اپنے ارد گرد پھیلی بھی گمراہیوں کو دور کرے گا, لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرے گا, اور ان سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے لے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آج میری آنکھیں بند ہوئی تو مجھے وہاں بھی تو سب چاہیے. تو آخرت کی کھیتی کے لیے وہی تیاری کرے گا جو عقل مند ہوگا, جس کی دنیا صرف دنیا نہیں ہوگی, وہ آخرت کے لیے اس دنیا کو اپنے لیے ایک ڈھال بنائے گا. آج اس پہ کوشش کریں گے کل وہاں ملے گا, اور جس نے ادھر بیج ڈالا نہیں کل وہاں فصل کی تیاری کہاں کرے گا. ایک لیکچر ہم نے اٹلانٹا سے کیا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ آخرت کا پھل پانے کے لیے دنیا کی کھیتی میں بیج ڈالنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس وقت محنت کی توفیق دے. آپ دیکھیں وہ کسان جو بیج ڈالنے کے موسم میں سویا رہے, چھٹیوں پہ چلا جائے, کھاتا پیتا رہے, کیا پھر پورا سال حسرت نہیں ہوگی؟ میرے نزدیک رمضان بھی ہر سال ہمارے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالتا ہے. دورہ قرآن سے جو پانی ملتا ہے وہ اس بیج کو بڑھاتی ہیں, اور ہم گواہیاں لیتے دیتے رہتے ہیں سارا سال ہی کہ رمضان کے دورہ قرآن کے بعد سے میں نے فلاں کورس جوائن کیا, اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے سب دیکھ لیجئے. تو دعا کیجئے کہ آج ہم اس کھیتی میں کوئی بیج ڈال دیں تاکہ کل وہاں پھل مل سکیں. نزد لہو فی ہرسی ہی, آپ ایک ڈالیں اللہ آپ کو 70 دے گا, آپ 70 ڈالیں اللہ 70,000 دے گا. یعنی آپ کی تھوڑی تھوڑی کوششوں کو اللہ بڑھاتا ہے. دیکھیے آپ کھڑے رہیں اللہ تعالیٰ زیرو لگا لگا کر اپنی مدد دیتا رہے گا, تو 10, 100, 1,000, 10,000 لاکھوں میں بدل جائیں گی آپ کی کھیتیاں. اور اللہ کرے قیامت کے دن ہمارے لیے فصلوں کی فصلیں, کھیتیوں کی کھیتیاں تیار ہوں. ایسا نہ ہو کہ سب کچھ دنیا کی کھیتی میں چھوڑ کر ہم خالی ہاتھ چلے جائیں. کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو بھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا, یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے. तो आज का फितना देखिएगा, अल्लाह का हुक्मा है फस्तकीम कमा उमिरता, खड़े रहो इस्तकामत रखो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। लेकिन आज हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? शरीयत इलाही की बजाय खुद साख्ता कानून साजी है। हमसे मतलूब था शरीयत कायम करो, दीन पर मजबूती से अमल नहीं कर पाते, जबकि मतलूब था कि इस्तकामत फिर दीन करो, मुनकिरों और ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, जबकि मतलूब था कि मुनकिरों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, तफरकाबाजी में पड़े हैं, जबकि मतलूब था कि तफरकाबाजी न करना, और सिर्फ दुनिया के लिए मेहनत करते हुए देख रहे हैं, और आखिरत सिर्फ आटे में नमक के बराबर। यानी हदीस उलट दी, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब व नवाबिर सबील, और साथ ही क्या कहा कि इस दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए इतनी मेहनत करो जितना वहाँ रहना है। हमने ऑपोजिट कर दिया बिल्कुल, जितनी हमें दुनिया के लिए करनी थी उतनी हम सिर्फ दीन के लिए करके मुतमईन है। कर लिया ना, हिस्सा डाल दिया ना, कुछ तो कर लिया, चलो एक बच्चे को ऑफिस बना दिया, हमारी आखिरत बन जाए। जबकि मतलूब क्या था कि दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मेहनतें की जाएँ, कोशिशें की जाएँ। इसी तरह देखिए कि दावत दीन अल्लाह के दीन के जब बुलाने के नाम पर बहसें और झगड़े करते हैं, हालांकि हमसे मतलूब क्या था कि हिकमत से दावत देना और झगड़े और बहसों में नहीं पढ़ना। जब किताब ही नहीं पढ़ी तो जो मर्जी करें, कसूर उनका नहीं है, कसूर उनके जिन्होंने किताब से रोका, और ख़ुद अपने नफ्स की वजह से हमारे पास इतना वक्त ही नहीं कि हम इस किताब के लिए मेहनत कर सकें। अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में ले जाते हैं ज़हनी तौर पर, तरह ज़ालिमीन मुशफिकीन मिम्मा कसबू वहुवा वाक़िउम बिहिम। आप देखेंगे ये ज़ालिम अपने अमाल से डर रहे होंगे जिनके बबाल इन पर वाक़ होने वाले हैं, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वो बहिश्तों के बागात में होंगे, वो जो ख्वाहिश करेंगे अपने रब के पास इसे मौजूद पाएंगे। चंद सेकंड सोचिए, दुनिया में ये नहीं होगा, आखिरत के लिए इसको मुंतकिल कर दें। यही है बड़ा फजल, यही वो है जिसकी बिशारत अल्लाह ताला अपने बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक नेक अमाल किए। अल्लाह हमें इन बशारतों का मिसदाक बना दे, हम डिजर्व करें इन खुशखबरियों को पाने के लिए। तो कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता मगर मोहब्बत रिश्तेदारी की। जो शख्स कोई नेकी करे हम इसके लिए इसकी नेकी में और नेकी बढ़ा देंगे, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत कदरदान है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा है? अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह ताला अपनी बातों से झूठ को मिटा देता है और सच को साबित रखता है। वो सीने की बातों को जानने वाला है, वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता मिन इबादिही व याफ़ू अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून, और जो कुछ तुम कर रहे हो सब जानता है। छन सेकंड सोचिए, कोई बात मांग लीजिए अल्लाह से, अल्लाह हमारे अगले पिछले गुनाह माफ़ करते हैं। ईमान वालों और नेकुकार लोगों की सुनता है और इन्हें अपने फजल से और बढ़ा देता है, और मुनकिरीन के लिए सख्त अजाब है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो सब बंदों की रोज़ी फराख कर देता, चाहते तो सब यही है ना, लेकिन नुकसान क्या होता, तो वो ज़मीन में फसाद बर्पा कर देते। यानी तू भी रानी मैं भी रानी तो कौन भरेगा पानी, सबके पास पैसा होता तो ये छोटे छोटे काम कौन करता। लेकिन वो अंदाजे के साथ जो कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है, यानी बर्तन देख के उसमें डालता है। बंदे का जितना वसफ़ और जितना ज़र्फ़ होता है ना, अल्लाह उतना ही डालता है। वो अपने बंदों से पूरा ख़बरदार है और खूब देखने वाला है। तो क्या पता चला आयत 27 में अल्लाह का फ़ैसला, वला कि युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, अल्लाह अपने अंदाज़ों के मुताबिक देता है रिस्क भी। जब हम गैर मुस्लिमों से मरूब होते हैं ना, तो सारी दौड़ धूप दुनिया की ज़िंदगी के लिए लगा देते हैं। मादियत परस्ती का फितना निकलता है इसमें से, जो पीछे देखा है पारा 15 में, और दुनिया की वाहत दुनिया की कामयाबी वाहद हदफ रह जाती है ऐसे लोगों का, और हयात जावदां की ख्वाहिश है। इस मरूबियत को निकाल कर अल्लाह की मरूबियत में आ जाइए तो दुनिया भी मिलेगी और आखरत भी। और वही है जो लोगों के नाउमीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, वही है कारसाज और काबिल हमदो सना। और इसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश है और जानदारों का फैलाना है, और वो इस पर भी कादिर है कि जब चाहे इन्हें जमा कर दे। इतनी कुदरतों वाले से मरूब होइए कि एक सेकंड में पूरी दुनिया को खड़ा कर दे या दुनिया को गिरा दे। तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है, और वो तो बहुत सारी बातों से दरगुजर भी फरमा लेता। ये आयत पिछले 2 माह में कई बार पेश की गई कि लोगों, जब कोई मुसीबत आए, कोई वबा आए, कोई मुश्किल आए, तो मान लो कि अल्लाह ने मेरे ही किसी गुनाह की सजा में मुझे इसमें डाल दिया, हालांकि याफ़ुन कसीर, बहुत सारी तो वो वैसे ही दूर कर देता। अगर हर गुनाह और हर मस्ती और हर हर मस्ती पे अल्लाह में पकड़े बिस्तर पे लगा दे, पानी का घूंट ना पी सके, करवट ना ले सके, बेड सोल हो जाए हमें, ये तो माफ़ कर कर के हमें अल्लाह ताला इस मुकाम पे लाता है। फमान तुम बे मोजी न फिल अर्दी, और तुम हमें ज़मीन में आजिज़ करने वाले नहीं हो, तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के ना कोई कारसाज है ना मददगार। यानी ऐसे लग रहा है कि अल्लाह अपनी विलायत को साबित करते जा रहे हैं और हमारे दिल मानते जा रहे हैं कि वाकई अल्लाह, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते अगर आप उनको हुक्म ना दे दें। और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी कश्तियां इसकी निशानियों में से, इनको देख के मरूब हो, कैसे पानी में का पत्थर फेंके तो पानी के अंदर चला जाए और मनो टनो वजन की कश्तियां ना जाए, क्या इससे मरूब नहीं है? क्या अल्लाह से इम्प्रेस नहीं होते? अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे और ये कश्तियां समंदरों पर रुकी रह जाएं। यकीनन इसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं, या इन्हें इनके करतूतों के बायस तबाह कर दे, वो तो बहुत सी खताओं से दरगुजर फरमाता है। और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं वो मालूम कर लें कि इनके लिए कोई छुटकारा नहीं। कायनात पे गौर करते जाएं, दिल गवाही देगा कि अल्लाह का मुकाम क्या है। तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो जिंदगानी है दुनिया का कुछ यूं ही सा असबाब है, यानी ज़्यादा फिक्र ना करो। और अल्लाह के पास जो है वो इससे कई गुना बेहतर और पायदार है, वो इनके लिए जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। कैसे खूबसूरत तरीके से फोकस चेंज किया जा रहा है, जूम इन जूम आउट, इस दुनिया पे नज़रें लगाने की बजाय आखिरत के मिरर में देखना शुरू कर दो। और कबीरा गुनाहों से और बेहयाई से बचते हैं, और गुस्से के वक्त भी माफ़ कर देते हैं, और अपने रब के फरमान को कबूल करते हैं, और नमाज की पाबंदी करते हैं, और इनका हर काम आपस के मशवरे से होता है, और जो हमने इनको दे रखा है इसमें से हमारे नाम पर देते हैं, और जब इन पर जुल्म ज्यादती हो तो वो सिर्फ बदला ले लेते हैं, यानी इससे बढ़कर नहीं करते, और बुराई का बदला इस ऐसी बुराई ही तो है, और जो माफ़ कर दे और इसलाह कर दे तो इसका अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। फिलवाक़ अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं फरमाता। खूबसूरत पैकेज है, ये आयतें बड़ी फेमस है 36 से 40, कि जिसमें एक खूबसूरत किरदार है, यानी कुरान पाक में डिफरेंट करेक्टर्स हैं ना, तो उसमें से ये भी नोट कीजिए। क्या पता चला कि मरूबियत से दूर लोग अल्लाह पे भरोसा करने वाले होते हैं, अला रब्बिम यतवक्कलून, और उनमें जो खूबियां पैदा होती हैं इन आयात की रोशनी में, पहली बात है बेहयाई से बचने वाले। देखिए, हर वो चीज़ जो आपको हया से दूर कर दे, आपको उसको हटाना पड़ेगा, चाहे आप एम्बेरस्ड हैं, चाहे पीयर प्रेशर में लोग आपसे आपके हाल हुलिये बदलने को कि आपको गलत चीज़ों में ले आए, आपको होमोसेक्सुअलिटी की तरफ ले आए, आप नहीं लाएंगे क्योंकि आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं। फिर ऐसे लोग जज्बात पे काबू रखते हैं, छोटी सी बात पे भड़क नहीं उठते, गुस्सा नहीं होता कि तीली दिखाई और आग लग गई, नमाजों की पाबंदी करने वाले होते हैं, कबीरा गुनाहों से बचते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा को जो फ्लैग लगा हुआ है उसमें कबीरा गुनाह भी है, बड़े बड़े गुनाह हमने इतने छोटे और मिनिएचर समझ ली कि इट्स ओके। ये भी फितना मरूबियत का पैदा करना है, कह लीजिए कि मरूबियत का बच्चा कबीरा गुनाह में कसरत से जाना है। इस तरह आपस में मुशावरत करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि हरफन मौला नहीं है, अल्लाह के नबी बहुत मशवरा करते भी थे, लेते भी थे, देते भी थे, फिर जहाँ सही होता था मानते थे, जो सही नहीं होता था उसको रिजेक्ट भी करते थे। बाज़ लोग मशवरा देकर कहते हैं अब आप हमारी हर बात भी मानी है, तो इसको अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दिया। फिर सिर्फ बुराई के बदले मुआफ़ करने वाले होते हैं, सोचिए किसी एक को जिसका दिल नहीं कर रहा माफ़ करने को, इन आयतों की मोहब्बत में उसको माफ़ कर दीजिए। और इसी तरह सब्र और इसलाह करने वाले होते हैं, अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में शामिल फरमा ले। इसके बरक कुछ रुख्सतें भी मौजूद हैं कुछ सरकमस्टांसिस में, वो क्या है, वलमन इंतसर बाद ज़ुल्मिही फ़ौलाइका मा अलैहिम मिन सबील, और जो शख्स अपने मज़लूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर इल्ज़ाम का कोई रास्ता नहीं, ये रास्ता सिर्फ इन लोगों पर है जो खुद दूसरों पर जुल्म करें और ज़मीन में नाहक फसाद करते फिरें, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो अल्लाह ताला आपको क्या कहते हैं कि अगर आप तौहीद परस्त मोमिन हैं तो अल्लाह पे भरोसा करेंगे, 36 में पढ़ लिया। اور 40 آیت میں دیکھ لیا کہ غیر مسلموں سے معروف بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے بھٹکنے سے بچائے. دو رویے, دو شخصیات ہیں. پھر 42 آیت میں دیکھا کہ الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق, کہ وہ لوگ جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ناحق قسم کی سرکشیاں کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو جتنا غیر مسلموں سے معروب ہوگا, نمبر ایک حرام اور حلال سے بے نیاز ہوگا. آج دیکھیے بہت سارے مسلمان پک کا گوشت نہیں کھاتے لیکن شراب پیتے ہیں, کچھ شراب نہیں پیتے تو دوسری چیزوں میں چلے پڑتے ہیں. خود نمائی کرنے والے ہوں گے, ان کو اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور بڑے بڑے گیجٹ کے ذریعے دنیا کو دکھانا اور اپنے فیورٹس جمع کرنا بڑے پسند ہوتے ہیں. ٹرینڈس کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں. ٹرینڈ سیٹرز نہ بھی بنے نا تو ٹرینڈس کے پیچھے بھیگی بلی بن کے پھریں گے. موسمی مسلمان ہیں, یعنی رمضان کے مسلم, عید کے دن کے کچھ اور. اسی طرح گرمی سردی کا اسلام کچھ اور ہے, دکھ سکھ کا اور ہے. خوشیوں میں اسلام کا کوئی اور ہی رنگ دکھے گا اور غموں میں کچھ اور ہی دکھے گا. اسی طرح انا پرست ہوتے ہیں, سیلف میڈ کا نعرہ لگاتے ہیں, مقابلے بازی کرنے والے ہوتے ہیں اور جلد باز ہوتے ہیں. کیسا کردار سامنے آتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, مروبیت سے شاید فائدہ ہو جائے. دو بھائیوں کی مثال لے لیتے ہیں, اچھا لگے گا. کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا, بھائیوں میں تو سارا دن ہوتا ہے اور سارا دن صلح بھی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ, یہ تو فطرت کا اصول ہے. آپ جس سے ناراض ہوں, جھگڑا ہو, غصہ آیا ہو, کیا آپ اس کی وارڈروب کھول کے اس کے کپڑے پہنیں گے؟ اور جائیں بھی کسی دعوت میں تو وہاں اچھا لگے گا؟ ہمیں تو اللہ رحم کرے کسی سے جھگڑا پڑ جائے تو اس کی چیزیں واپس کرتے ہیں, منگنیاں چھوٹتی ہیں, لوگ کپڑے بھی واپس کرتے ہیں, رکھو ہم نے نہیں پہننے, ہمارا نہیں دل کرتا تمہارے کپڑوں کو پہننے کو. کیا ہم غیر مسلموں کو حقیقت میں اسلام کے آئینے سے دیکھیں اور کفر اور شرک کے زاویوں سے پرکھیں تو دل چاہے گا ان کے ڈریس پہننے کو؟ ایک مثال دیتی ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک شیر وہ ہے جو سرکس میں ہے, لوگ ٹکٹ دے کر جاتے ہیں اور اس کے تماشے دیکھتے ہیں. آج اس کی کوئی اور شکلیں ہوں گی لیکن بہرحال ایک فیمس چیز تو یہی ہے. اس کے علاوہ ایک شیر ہے جو جنگل میں رہتا ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. فرق کس کا ہے؟ اس لیے کہ جو سرکس کا شیر ہے نا, یہ شیر کی کھال میں بھوسی بھری ہوئی ہے. سب کو پتہ ہے اس کے اندر بھوسی, اور اوپر کوئی ڈوریوں سے رسیوں سے اس کے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے. لوگوں کو یہ شعبدہ بازی پتلی تماشا اچھا لگتا ہے. جب مسلمان شیر کی کھال میں بھوسی بھرا ہوا مسلمان ہوتا ہے تو لوگ اس کو اپنے اشاروں پہ نچاتے ہیں, جیسے کہ آج ہو رہا ہے. اس کے برعکس جنگل کا شیر اصلی مسلمان ہے, لوگ اس کا نام سن کے کانپنے لگتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں اصلی شیر بنا دے, ہم اوپر کے اور اندر کے کچھ اور مسلمان نہ بن جائیں. اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے, یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. یعنی واقعی لگتا بڑا مشکل ہے کسی کو معاف کرنا, اور خاص طور پہ جس نے دل دکھایا ہو, لیکن یہی تو صبر ہے پھر. اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کا, اس کے بعد کوئی چارہ احساس نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے, کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اب کیا فائدہ؟ تو لکھیے دیر از نو یو ٹرن, سیدھا ہی جانا پڑے گا. اور آئے 36 سے 43 میں کیا دیکھا؟ اقامت دین اور اقامت شریعت کرنے والوں کے اوصاف. یہ مطلوب ہے آپ سے مجھ سے, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, شروع سے لے کے آپ آج علم سیکھ رہے ہیں, کل آپ اور سیکھیں گے, پھر آپ اور سیکھیں گے, پھر آپ سیکھنا سیکھیں گے اور پھر سکھائیں گے, پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے, پھر آپ پڑھائیں گے, پھر اسکول کھولیں گے. ان سب کے بعد جو الٹیمیٹ گول ہے نا, وہ اقامت دین ہے, نفاذ دین ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ تبلیغ کے وقت نرمی کرنی ہے, لیکن جب نفاذ دین ہوگا نا تو سختی ہوگی. تو جو اللہ کے تین تقاضے ہیں, میں نے کئی دفعہ اس پہ بات بھی کی ہے الحمدللہ, کہ اللہ کے ہم سے صرف تین تقاضے ہیں. پہلے بندگی مان لو, خود کو چھوٹا مانو. دوسری بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑو, اور آخر میں نفاذ اسلام ہے. اپنے اس 5 فٹ کے جسم پر اسلام کو لے جاؤ, کل ملک میں بھی آئے گا اور پھر پوری دنیا میں آئے گا. تو کیا کریکٹر سامنے آتا ہے اگر آپ دیکھیں ان آیات کی روشنی میں؟ تو نمبر ایک, رب پہ بھروسہ کرنا, اس کے حکموں کو ماننا. یہ لوگ ہیں جو دین قائم کریں گے انشاءاللہ کل. کبائر اور فواہش سے مجتنب, یعنی اجتناب کرنے والے ہی دنیا میں اللہ کا دین نافذ کریں گے. جو خود اس میں انڈلج ہو گیا, بتائیے وہ کیا دین نافذ کرے گا؟ اس کو پتہ ہے ساری حدیں تو میرے بھی لگ جانی ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں, بدلے اور انتقام کے بجائے صبر اور درگزر کرنے والے لوگ انشاءاللہ دنیا میں اللہ کا دین نافذ کریں گے, اور باہم مشورے کرنے والے اور نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کے حاملین دنیا میں اللہ کا کام کریں گے. یعنی خلافت کی ذمہ داریاں جو آدم علیہ السلام کے ذریعے ملے تھیں, ان کو ادا کرنے کے لیے یہ کم از کم شرائط ہیں जाज उम्मत मुस्लिमा को बुरी करनी है, और तो इन्हें देखेगा कि वो जहन्नुम के सामने ला खड़े किए जाएंगे, मारे जिल्लत के झुके जा रहे होंगे और कनखियों से देख रहे होंगे। ईमानदार साफ कहेंगे कि हकीकी जियाकार तो वो हैं जिन्होंने आज कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। हाईलाइट कीजिए, हम खुद नुकसान में डल सकते हैं लेकिन हम अपने घर वालों को नहीं देख सकते नुकसान में। हम अपने बच्चों को नहीं डुबोएंगे, कोई बाप ये नहीं करेगा कि खुद बच जाए और बच्चों को जेल में डाल दे, लेकिन यहाँ किन की बातें हो रही हैं जो अपने साथ अपने घर वालों को भी डालेंगे। वक़ालज़ीना आमनु इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अन्फुसहुम वअहलीहिम यौमल क़ियामा। तो चंद सेकंड सोचिए, मैं वो माँ तो नहीं हूँ जो अपने बच्चों को खसारों में डाल रही हूँ? मैं वो बाप तो नहीं हूँ जो अपने बच्चों की दुनिया को ज़ाया कर रहा है, जो उनको बैंक करप्सी की तरफ लेके जा रहा है? अला इन्नल ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम। यकीनन ज़ालिम लोग दायमी अज़ाब में हैं, इनके कोई मददगार नहीं जो अल्लाह से अलग इनकी मदद कर सके, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे इसके लिए कोई रास्ता नहीं। अपने रब का हुक्म मान लो। ये भी खूबसूरत आयत, इस्तजीबू लिरब्बिकुम एक्सेप्ट इट से लब्बैक। बोलो जी अल्लाह जी मान लो। मिन कबली याति यौमुल्ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, इससे पहले कि अल्लाह की जानिब से वो दिन आ जाए जिसका हट जाना नामुमकिन है। तो याद रखिए, टाइम बाउंड चेक है तौबा का और वॉलंटियर करने का अपने आप को अल्लाह के लिए। जब वक्त चला जाएगा ये लिंक हटा लिया जाएगा, फिर देखें क्या होता है। एक दफ़ा जब मुकाम पीछे रह जाए और आप आगे आ जाएं और यू टर्न मुमकिन ना हो, तो लाख कोशिश कीजिए, रिवर्स में गाड़ी डाल दीजिए, लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो इस दुनिया में इस असूल को समझ कर जिए। तुम्हें इस रोज़ ना तो कोई पनाह की जगह मिलेगी, ना छुप कर अनजान बन जाने की, ये भी नहीं कि क़यामत के दिन किसी मैदान में कोने में छुप जाओगे और कोई तुम्हें देखे ना, क्योंकि आखिर में फिर नाकाम लोग यही कहते हैं ना, अच्छा हमारा जिक्र ना कीजिएगा, नहीं हमारे बारे में ना कुछ बोलिएगा, हमारा रिजल्ट ना अनाउंस करें। क़यामत के दिन ये नहीं होगा। अगर वहाँ फर्स्ट आने वाले और साबिकून साबिकून के रिजल्ट निकलेंगे ना, तो वहाँ फेलों में फर्स्ट आने वाले का रिजल्ट भी दिख रहा होगा। अल्लाह ताला हमें इसकी फिक्र लगा दे आज ही। लेकिन फ़ैना रदु फ़मार सलना कालेहिम हफीज़ा, अगर ये मुंह फेर ले तो हमने आपको इन पर निगेबान बनाकर नहीं भेजा, आपके जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। हम जब कभी इंसान को अपनी मेहरबानी का मजा चखाते हैं तो इस पर इतरा जाता है, और अगर इनके अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। थोड़ दिला, आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए, जो वो चाहता है पैदा करता है और जिसको चाहता है बेटियाँ देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, इन्हें जमा कर देता है बेटे भी और बेटियां भी देता है, और जिसे चाहे बांझ कर देता है, वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। यही चार मुमकिन सूरतें जो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं, तो कोई बाबा जी नहीं है बेटे को बेटी में या बेटी को बेटे में बदलने वाले। नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से, या किसी फरिश्ते को भेजे और वो अल्लाह के हुक्म से जो चाहे वो वही करे, बेशक वो बरतर हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूह को उतारा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा। आप इससे पहले ये भी ना जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज़ होती है? सच्ची बात है, आपने भी कभी जाना था कुरान में इतना कुछ है? यही बात अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि जब तक कुरान नाजिल नहीं हुआ आपको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि आपको कितना बड़ा ख़जाना मिलने वाला है, लेकिन आज ये क्या बन गया? लेकिन हमने इसको नूर बना दिया और इसके ज़रिए से अपने बंदों में जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं। अल्लाह हमारे लिए भी हिदायत के फैसले कर ले, ऐसा ना हो कि पढ़ के भी हम अंधेरों में ही पड़े रहें। और बेशक आप राह रास की रहनुमाई कर रहे हैं, इस अल्लाह की राह जिसकी मलकियत में आसमान और ज़मीन की हर चीज़ है, आगाह रहो सब काम अल्लाह ताला ही की तरफ लौटते हैं। अला इलल्लाह ही तसीरुल उमूर। इसी तरह एक दिन मैंने आपने भी जाना है, सारी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब मरूबियत में आते हैं, जब हम पीयर प्रेशर में आते हैं ना, तो हर वक्त ये जुमला दिमाग में होता है लोग क्या कहेंगे। तो लिख लीजिए, लोग आखिर में ये कहेंगे जुमला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय सुना कुछ फलां का इंतकाल हो गया, अपने अपने नाम के साथ लिख लीजिए। एक दिन लोग मेरे भी इंतकाल की बात कर रहे होंगे कि इफ्फत का इंतकाल हो गया। अब वो है असल बात, सारी ज़िंदगी लोग हमारे गुण गाएं, मोतियों में जपें, हमारा नाम तारीफें करें, फूल पत्तियां भेजें। याद रखिए, अगर अल्लाह के हाँ हमारा नाम नहीं तो कुछ नहीं। तो क्या सीखा हमने सूरत शूरा से? तौबा गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। आफात और तकलीफ़ पर सब्र से ख़ताओं की माफ़ी होती है। दरगुज़र करना बदला लेने से बेहतर है। आसानी में शुक्र, तंगी में सब्र मोमिनों की सिफत है, और औलाद का इख्तियार अल्लाह ही के पास में। चाहे तो कुमारी मरियम को बच्चा दे दे, और चाहे तो किसी शौहर और बीवी को सारी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बावजूद भी औलाद ना दे। तो हम देख चुके पीछे कि वली सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, पूरे पारे में ये सब कुछ देखते आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह ताला को पहचाना। तो इस सूरत के साथ ही हम इस बात को पूरा करते हैं कि अल्लाह तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ तुझ पे नज़रें लगाने वाला बना दे। ज़िंदगी दे, मौत दे, बीमारी दे, बारिश बरसे, कुछ असबाब ज़िंदगी में मिले ना मिले, तू मदद कर, तू ही कर, हमें किसी और के बस ना डालना, मुझे तो बस मालिक तू काफ़ी। आगे सूरज ज़ुख़रुफ़ है। बनाओ सिंगार को कहते हैं, डेकोरेट करना सोने को भी कहते हैं। 43 नंबर की सूरत, 89 आयतें हैं, बड़ी प्यारी आयतें हैं। ख़ास तौर में इसमें दोबारा आपको एक फेमिनिन टच दिखेगा, और ख़ास तौर में इसमें जिस शिर्क की तरफ बात है वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ बनाने का शिर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, वल किताबिल मुबीन। अल हवामीम में से एक नई सूरत आपके मेरे सामने। और ऐसी सूरतों के बारे में कहा जाता है कि ये कुरान के बागीचे हैं, बाग हैं, यानी दिल चाहे ना कि तरह तरह के फल फूल तोड़ो तो इन सूरतों को पढ़ो। कसम है इस वाज़ेह किताब की, हमने इसको अरबी जुबान का कुरान बनाया है कि तुम समझ लो। यकीनन ये लोहे महफूज में और हमारे नज़दीक बुलंद मरतबे की किताब है। क्या हम इस नसीहत को तुमसे इस बिना पर हटा लें कि तुम हद से गुजर जाने वाले हो। नोट कीजिए जरा, यानी अब तुम अमल नहीं कर रहे तो फिर क्या ये कुरान तुमसे दूर कर ले। या ऐसे ही कि एक बच्चा जो क्लास में संजीदा नहीं, उसका टीचर उसे कि अब तुम नहीं पढ़ रहे तो क्या हम ये स्कूल बंद कर दें। है तो बहुत बड़ी डांट अगर हम समझ पाएं तो खौफ से पढ़ने और सुनने की बात है। और हमने अगले लोगों के लिए भी कितने ही नबी भेजे, जो नबी इनके पास आए उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। लोगों को दीन के साथ मजाक सोचते, क्योंकि संजीदगी नहीं है ना। बस हमने इनसे ज्यादा जोरावरों को तबाह कर डाला, और अगलों की मिसाल गुजर चुकी, यानी इनके मजाक उड़ाने पे जो इनके साथ होने वाला है, इसको तारीख के आईने में देख लें। अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो यकीनन इनका जवाब यही होगा कि इन्हें गालिब व दाना अल्लाह ताला ने ही पैदा किया। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और बिछौना बनाया, और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते कर दिए ताकि तुम राह पा लिया करो। इसी ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल फरमाया, बस हमने इस मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन आयतों को सुनते वक्त अल्लाह ताला से मरूब हो रहे होंगे, इम्प्रेस्ड हो रहे होंगे इंशाल्लाह। जिसने तमाम चीज़ों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई और चौपाए जानवर पैदा किए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम इनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो, फिर अपने रब की नेमत को याद करो। जब इस पर ठीक ठाक बैठ जाओ और कहो पाक जात है इसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हमें इसे काबू में करने की ताकत न थी, और बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और उन्होंने अल्लाह के बास बंदों को इसका जूस ठहरा दिया। नाउज़ुबिल्ला, यकीनन इंसान खुला न शुक्रा है। सफर की दुआ, सवारी पे सवार होने की दुआ देख लीजिए। सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। क्या सिखाया कि सवारी अहम नहीं, मोटरसाइकिल पे हो, सुजुकी पे हो, मर्सिडीज पे हो, लैंड क्रूजर पे हो, असल चीज मंजिल है। कल पहुंचना किस पे, इस पे बैठकर? तो बड़े बड़े नामों में ना उलझे। कोई मोटरसाइकिल पे बैठकर मस्जिद में चला जाए तो वो मोटरसाइकिल उस मर्सिडीज से अच्छी है जो कि किसी नाइट क्लब के आगे रुक जाए। इस शहर से निकलिए, ये जो मरूबियत है ना गाड़ियाँ। अच्छा, छोटे बच्चे हमेशा ही गाड़ियाँ देखते थे, हम भी जब छोटे थे तो बच्चे गाड़ियाँ से खेलते थे, लड़कियाँ गुड़िया से खेलती थी, लड़के गाड़ियों से। अब तो दोनों के खिलौने ही एक हो गए, तभी तो बड़े होकर भी मत मारी जाती है, लड़के लड़कियाँ और लड़कियाँ लड़के बने बैठे हैं इल्ला माशाल्लाह। लेकिन अब देखिए कि गाड़ियाँ आज के दौर में दिमागों पर रोब डालती हैं। ये बड़ी गाड़ियों के फितने हैं जिन्होंने आपको सुबह शाम दो दो जॉब्स करने पर माइल किया है, और फिर अल्लाह की फरमा बरदारी से हटाया। चंद सेकंड आंखें बंद कीजिए, मेरे पास कितनी सवारी हैं, और अल्लाह की रजा से है कि नाराज़गी से है। बस लग पता जाएगा कि हम इस शरीयत को कितना अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख ली और तुम्हें बेटों से नवाजा, हालांकि इनमें से किसी को जब इस चीज़ की खबर दी जाए जिसकी मिसाल इसने अल्लाह रहमान के लिए बयान किया तो इसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गमगीन हो जाता है। वही सूरत नहल वाला टॉपिक जो यहाँ भी आ गया कि बेटियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, और अल्लाह के नाम के साथ बेटियाँ जोड़ते हो कि अल्लाह ताला की औलाद लड़कियाँ हैं जो जेवरात में पलें और झगड़े में अपनी बात वाजे ना कर सकें। ये आपकी बातें हैं। औरत जेवर पसंद करती है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। आज की मरूबियत का एक और तोहफा देखिए, औरत को मर्द बना दिया गया। कपड़े जो पहने मर्दों वाले, तो अब उस पर चूड़ियाँ तो नहीं पहनेगी, उस पर जेवर बुंदे तो नहीं पहनेगी। हालांकि शुरू से देख लिया औरत के अंदर एक लज्जा है, एक हया है। औरतें पहनती अच्छे डार्क कलर्स, पहनती लिपस्टिक लगाती, शादी के बाद जेवरात में लदी फदी लड़कियां अच्छी लगती हैं। आज कहते हम जेवर नहीं पहनते, हम गोल्ड नहीं पहनते, बस डायमंड के 2,000 रख दीजिए, उसी में बाप की कमरदोरी हो जाएगी। आप 6 सेट सोने के ले लें, उसके मुकाबले में हो सकता है 2 सेट डायमंड के इससे महंगे हों। मैं मना नहीं कर रही, ना मैं इसकी बात कर रही हूँ, लेकिन ये भी एक वेस्टर्नाइज कल्चर है। वेस्टर्न औरतें बहुत छोटे छोटे जेवर, बहुत पतली पतली चीज़ें पहनती है। आज पढ़ी लिखी लड़की कौन है जो बिल्कुल कुछ ना पहने, पतला सा और महंगा सा, और वो भी ब्रांडेड, नीचे स्टैम्प भी लगी हो ना, कल काम आने का। आप डायमंड खरीदिए आज, कल जीरो का है, कुछ रीसेल नहीं है। आज भी आप देखिए कि बेटियों को अगर जेवर देते थे पेरेंट्स, आज भी देते हैं, या कल किसी मौके पर जरूरत पड़ी बिक तो सकता है। तो सोने की तो रीसेल है, डायमंड की नहीं। तो जब मरूबियत का शिकार होती हैं माएँ और सासें, तो अमूमन फिर बच्चों के कहने पे वो बेकार चीज़ें बाजारों से खरीद लाएंगी जो कल किसी काम के नहीं। फिर आप देखिए औरत को ये परसेप्शन दे दिया कि जेवर पहनने वाली, गोटे किनारी कपड़े पहनने वाली औरतें पेंडू होती हैं। तो हो जाइए पेंडू, क्या हर्ज है, पेंडू अच्छे नहीं होते क्या? ये भी एक हमारे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं कि औरत को दिन ब दिन लड़कों वाला वक्कर है। मुझे तो खौफ है जो कपड़े सारा साल पहनने हैं, हर मौके पे पहने, अगर वही शादियों में पहनी तो वो पैंटे कैसे जेवर से लदे फदी हैं, उस पे कैसे मोती किनारे लगे। उस वक्त फिर सब बड़े बड़े घाघे पहनने को तैयार हैं सिर्फ चंद घंटे के लिए। तो पहनने ओढ़ने से भी पता चलता है आप किन से मरूब हैं। आप किसी से दुश्मनी महसूस करें कि आप उनके जोड़े, उनकी फिल्में, उनके डिजाइन चोरी करेंगे कि हमें भी अपनी बहू बेटियों के ऐसे जोड़े बनाने हैं, तो ये एक पूरा कल्चर है। इस दर्द को महसूस कीजिए, ये लहजा लहजा हम डी ट्रैक हुए सिराते मुस्तकीम से उतरे और सबीलुल गई पे चढ़ गए। अल्लाह कहते हैं हाँ औरत जेवर पहनती है। अल्लाह के नबी ने उसामा को एक बार तसल्लियां दी, बच्चे थे गिर गए रो रहे थे, आपने कहा उसामा लड़की होता तो हम इसको जेवर पहनाते, इसको अच्छे कपड़े पहनाते। तो बेटियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए। ये जो आपने छोटी बच्चियों को फजूल कपड़े पहनाने शुरू कर दिए, वो भी चढ़े हुए कपड़े, इनके भी चढ़े हुए, वो लड़के और लड़की के कपड़ों में सिर्फ बटन के इधर से उधर होने का फर्क रह गया। तो बेटियों को बेटियों वाले कपड़े पहनाइए, बड़े बड़े घाघरे पहनाइए, उनको लंबी मैक्सियां पहनाइए, बाहया कपड़े पहनाइए ताकि लड़के और लड़की में फर्क हो। और झगड़े में अपनी बात वाजे ना कर सके, लोग कहते देखो कुरान हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट क्या कर रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं आप इतनी बोली हैं, आपको वक्त पे बात ही नहीं याद रहती, घर जाके कहती हैं ओहो मैंने तो ये जवाब देना था। तो ये तो आपकी खूबी है कि अल्लाह कहते औरत बड़ी झगड़ालू होती है और चपड़ चपड़ बोलती है। नहीं, अल्लाह ने औरत की तारीफ की है और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान की इबादत गुजार हैं औरतें करार दे लिया। क्या इनकी पैदाइश के मौके पर ये मौजूद थे? इनकी ये गवाही लिख ली जाएगी और इनसे इस चीज के बारे में पूछा जाएगा। तो आज की औरत गैर मुस्लिमों के तौर तरीकों से मरूब हो गई। बात तो सच की, सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ने, औरत का हुसन निस्वानियत है, हया उसका जेवर है। जेवरात पहनी बच्चियां, लड़कियां, औरतें अच्छी लगती हैं, लेकिन आज वर्किंग वुमेन के नाम पर औरत को मर्द बना दिया गया। बाकी बातें तो आप सुन चुके, दुआ कीजिए कि बेटियों को बेटी बना के पालना। और कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत ना करते, यानी हर बात का इल्जाम लोगों ने अल्लाह पे डालना, नाउज़ बिल्ला अपने दिल में लिखा हुआ है, हर बात अल्लाह की, जी अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह अल्लाह, नाउज़ बिल्ला। मैं सोचती हूँ जिस तरह अल्लाह के बारे में लोग बात करते हैं, कोई हमारे बारे में ऐसी बात करे तो हम कभी उससे बात ना करें दोबारा। इन्हें इसकी कुछ खबर नहीं, ये सिर्फ अटकल पच्चू यानी झूठ बातें कहते हैं कि हमने इन्हें इससे पहले कोई और किताब दी है जिसे ये मजबूत थामे हुए हैं। यानी इनका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? अगर ये कुरान नहीं पढ़ना तो कौन सी चीज़ों से फ़ायदे उठा रहे हैं? कहाँ से शरीयत ले रहा है आज का मुसलमान भी? नहीं नहीं बल्कि वो तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक मजहब पर पाया और हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चल कर राह याफ्ता हैं। देख लीजिए अल्लाह की शरीयत के मुकाबले में आबा परस्ती की शरीयत सच सच चलती है। इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहां क्या सुधा हाल, लोगों ने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादाओं को एक राह पर और एक दीन पर पाया और हम तो इन्हीं के नक्शे पाक की पैरवी करने वाले हैं। थान के पान, कपड़े माँ बाप जैसे ना पहने, लिबास नानियों दादियों जैसे नहीं है, طرز زندگی وہ نہیں، سچائی ان والی نہ رہی، بھول پن وہ نہ رہا، اور جہاں دین کی بات آئے تو وہ امی جی مرحومہ یہ کرتی تھی مجھے بھی کرنا ہے، چار دوستوں کو لے آؤ، یہ ٹون ہوتی ہے آج ہماری، کیونکہ وہی نہیں ہے نا زندگی میں. جب شریعت کے ساتھ تعلق رسمی سا رہ جاتا ہے تو لوگ عموماً اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بات کہلواتے ہیں. نبی نے کہا بھی، اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر یعنی مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آؤں، یعنی کتنا کانفیڈنس تھا انبیاء کرام کو کہ تم جن باتوں کو کر رہے ہو میں تو تمہیں اسے اچھا لائف سٹائل دے سکتا ہوں. آج ہم پہلے ہی دبے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بس ناکامی کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان ہونا، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ناکام ہیں، چونکہ ہم فلاں ہر چیز کا، جیسے ایک ستیلا بچہ ہوتا ہے نا گھر میں، برتن ٹوٹ گیا اس کا نام، روٹی جل گئی اس کا نام، میری مت مار دی اس نے اس کا نام. آج بعض مسلمان، معذرت کے ساتھ اونچی آواز سے کہہ رہی ہوں، آج کچھ مسلمان اسلام کے ساتھ ستیلے بچے والا سلوک کرتے ہیں، جو جہاں بیٹھ کے بات کر سکتا ہے وہ وہیں کر رہا ہے. اسلام پاؤں کی بیڑیاں دکھتی ہیں ہمیں، اسلام ترقی کے راستے کی رکاوٹ دکھتی ہے، ہمارے جیسے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت کیا ہے پھر؟ ہر چیز پہ تو آپ تقابل کرتے ہیں غیروں سے، وہ دیکھا کتنے اچھے ہیں، کتنے بولے ہیں، کتنے نائس ہیں، اور یہ ملاز، یہ فلاں، اس کو تو اللہ پوچھے گا، نعوذ باللہ. تو اسلام اور اسلام والوں کے ساتھ یہ ٹون بتاتی ہے کہ آپ کس سے مروب ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے روپ میں آنے کی ضرورت ہے. بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے کہ چھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. تو کیا سیکھا آیت 1 سے 25 میں سورہ زخرف میں؟ آج کے فتنے نعمتوں کی ناشکری، شرک فی الحکم ہے، اطاعت کا شرک ہے، آبا پرستی والا شرک ہے. ہم سے مطلوب کیا تھا؟ کہ نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتے، اللہ کے شکر گزار بنتے، دنیا میں توحید کو ثابت کرتے، شرک کا مٹھ مار دیتے، اور آبا پرستی سے نکال کر لوگوں کو اللہ پرستی کی طرف لے آتے. اب اس کی ایک عملی مثال حضرت ابراہیم کی صورت میں سامنے آ گئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. مشرق ماحول، مشرق گھرانے، خاندان میں پیدا ہونے والا ابراہیم امپریس نہیں ہے مشرقوں سے. آج ہماری تو رال ٹپک جائے ایسے کام کرتے، اور جس طرح ہماری شادیاں آج مشرقانہ کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. ایک ماں نے کہا کہ بچہ شادی ہال میں ہے، اور کہی جا رہا ہے شادی کب ہوگی، شادی کب ہوگی. بیٹا شادی ہو تو رہی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ کہا نہیں، ابھی دلہا دلہن نے آگ کے گرد پھیرے نہیں لگائے، ابھی پھولوں کے ہار نہیں ڈالے. ڈری اس وقت سے کہ جب اصل شادیوں میں یہ بھی پکچرائز ہونے لگے. مجھے خوف آ رہا ہے، لیکن میں کہہ سکتی ہوں ہو گیا ہوگا کہیں، یہ ہونے والا ہوگا. ہم فلمیں دیکھ کر تو شادیوں کو سیٹ کرتے ہیں، گانے دیکھ دیکھ کر تو ہم اپنے ہال سیٹ کریں. تو پھر ایسے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت ہے؟ اتنے روپ میں آگے آپ مشرق کلچر سے، آپ نے تو ان کو پیارا اسلام دینا تھا. ابراہیم کیسے جرت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی جرت دے. پیئر پریشر سے نکال کر اللہ اسلام کے پریشر میں ڈال دے. سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والی بات کر گئے، تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں. اس کا نمبر نوٹ کر لیں، 28 نمبر ہے سورہ زخرف کا. اگر آپ اس جرات سے اسلام کے لیے بات نہیں کریں گے تو آپ کی نسلیں اس طرح پھر باقی نہیں رہیں گی. اس کے برعکس وہ ماں باپ جو آج بھی اچھی زبانوں سے، اچھے طریقوں سے ان باتوں کو پیش کر رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ ان کی اولادوں کی حفاظت کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی طرح. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا. اور حق کے پہنچتے یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہمیں اس کے منکر ہیں. لکھ لیجئے، جو مروبیت کا شکار ہو جائیں، جو پیئر پریشر میں آ جائیں، ان کو حق بات اچھی نہیں لگتی، کڑوی لگتی ہے. وہ اسی پہ ایک دم اوفینڈ ہونے لگتے ہیں کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کر رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ بانٹیں گے کہ کس کو ملے کس کو نہ ملے. آپ دیکھیں کہ ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے، اور اسی طرح طائف کے چند امیر لوگ تھے، ان کا تقابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، کہتے تھے یہ یتیم مکہ، اس کو اللہ نے نبی بنانا تھا، اور اسی کے بعد فرشتہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کہ میری رحمت، یعنی مراد جہاں نبوت ہے، کیا یہ میری رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی ہے، دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے. اللہ دل دیکھ لیتا ہے، ان سے کام لیتا ہے. ابراہیم کو تو کوئی نہ روک سکا آگے بڑھنے میں، آپ کو مجھے کیوں روک رہے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ بھی ہمارے اپنے اندر یقین نہیں اپنے حق پہ ہونے کا، تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں. جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے. इसको भी हाईलाइट कीजिए। पीछे सूरत यूनस 58:57 में देखा था, यहाँ दोबारा वही बात आ गई, किन चीज़ों को जमा कर रहे हो। व रहमत रब्बी का खैरो मिम्मा यजमाऊ, ये रहमत है, ये दीन का काम कीजिए, दीन सीखिए, इस्लाम कुरान, और आज जिसने इसके साथ अपनी ज़िंदगी लगा दी उसको आने वाले वक्त में देखिए लोग हीरो कहेंगे। जब कोई चीज़ कम होती है, नायाब होती है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत होती है। आज दीन का सौदा गिरा हुआ है, इसका शेयर गिरा हुआ है, आज जिन्होंने इसको उठा लिया, कल देखिए इसका शेयर कितना बढ़ने वाला है। फिर लोग हसरत करेंगे, काश हमने अपनी ज़िंदगी में इस किताब को इसका हक दिया होता। और अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाएंगे, तो रहमान के साथ कुफर करने वालों के घरों की छतों को हम चांदी की बना देते, और जीनों यानी सीढ़ियों को भी जिन पर ये चढ़ा करते थे, और इनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगा लगा कर बैठते हैं, और सोने के भी। ये सब कुछ यूं ही सा दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा है, और आखिरत तो आपके रब के नज़दीक सिर्फ परहेजगारों के लिए है। सोचिए ज़रा, अगर ऐसा होता कितना बड़ा फितना। यही आयत हम ऊपर कर चुके हैं, थीम ऑफ दी पारा। तो मुनकरों को दुनिया में माल और दौलत और शान क्यों मिली, क्वेश्चन है सूरह ज़ुख़रुफ़ में। सूरह यूनुस में सवाल है हज़रत मूसा का अल्लाह से कि अल्लाह आपने इन फिरौनियों को इतना माल और दौलत क्यों दिया कि ये हमें दीन से रोकते हैं। तो सवाल आपके भी जहन में आता है कि अल्लाह ने इनको गोरा क्यों बनाया, इनके बाल गोल्डन क्यों बनाए, इनकी आंखें ग्रीन क्यों कर दी, इनकी सड़कें क्यों इतनी साफ कर दी, इनके मुल्क इतने खूबसूरत हैं। ये सवाल उठते हैं हमारी नस्लों के जहनों में, एक चक्कर लगाएं अपने मुल्कों का आकर कहते हैं अम्मी ये इस्लाम है, मुस्लिम इतने गंदे होते हैं, मुस्लिम ऐसे और ये वो। तो बात तो सच है कड़वी, माननी तो पड़ेगी, चाहे दिल ना कर रहा हो मानने को। तो नोट कीजिए इस बात को अपने लिए, आपके मेरे लिए ये बात है, अल्लाह ने गैरों को ये सब क्यों दिया। इसमें अल्लाह के दो असूल हैं जिनको इस वक्त हम सिर्फ मुख्तसरन समझ लें। एक तो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है हम मुसलमानों की, कि इनकी इन चमक दमक को देखकर तुम इधर आते हो या अल्लाह की तरफ आते हो। दूसरी बात यह कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की अहमियत नहीं। हदीस में आता है कि अगर मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया अल्लाह की नज़रों में अहम होती तो किसी काफिर को पानी का घूंट ना देना। फिर तीसरी बात है कि अल्लाह ने इनको दुनिया में ढील दी है ताकि आखिरत में अजाब दे, या तौबा कर लें दुनिया में तो इनको इस्लाम दे। इस तरह अल्लाह इनके नेक अमाल का सिला दुनिया में इनको दे रहा है, जो ये नेकियां करते हैं, बहुत सारी नेकियां करते हैं। याद रखिए, मत सोचिए कि गैर मुस्लिम नेकी नहीं करता, वो चैरिटी भी करता है, वो इंसाफ भी करता है, वो ह्यूमन राइट्स भी देता है। तो इनकी जो नेकियां हैं ना, उसके बदले में दुनिया इनकी खूबसूरत हो जाती है। हमसे मतलूब क्या, एक ऐसे लोगों की दुनियावी शान और शौकत से मरूब होने की बजाय इनको अल्लाह से जोड़ दीजिए। यकीन कीजिए, जो अल्लाह से जुड़ते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे मुसलमान भी बनते हैं। रिवायत है सही बुखारी की 5632, हुज़ैफ़ा बिन जमान रजी अल्लाह अन्हु मदाइन में थे, उन्होंने पानी मांगा तो एक देहाती ने इनको चांदी के बर्तन में पानी ला कर दिया। उन्होंने बर्तन को इस पर फेंक मारा और कहा, मैंने इस बर्तन को इसलिए फेंका है कि इस शख्स को मैं इससे मना कर चुका लेकिन ये बाज ना आया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रेशम और दीबा यानी सिल्क पहनने से और सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना किया था, और आपने फरमाया था कि ये चीज़ें इन मुनकिरों के लिए दुनिया में हैं और तुम्हें आखिरत में मिलेंगी। देखिए, जो अल्लाह पहाड़ों की तहों में सोना डाल सकता है, क्या सोने के घर नहीं बना सकता? कहाँ हम मुसलमानों का ईमान बचता इल्ला माशाल्लाह, कि मुसलमान हो जाओ तो मिट्टी के घर में रहो, और अगर गैर मुस्लिम हो तो तुम सोने के घर में रहो। कितनी बड़ी आजमाइश और फितने से अल्लाह ने बचा लिया। आज आप देखिए कि हमारे जहनों में एक परसेप्शन है, गैर मुस्लिमों के पास और मुसलमानों के पास क्या है? गैर मुस्लिमों के पास इल्म नाकिस है, यानी सिर्फ दुनिया का इल्म है, नक्स है उसमें, जबकि मुसलमानों के पास इल्म हकीकी है, जिसमें से एक हिस्सा इस वक्त आपके मेरे सामने है कुरान की सूरत में और हदीस भी है। गैर मुस्लिमों के पास टूटा फूटा खानदानी निज़ाम है, आज इसी निज़ाम की वजह से ये ख़त्म हो रहे हैं, जबकि मुसलमानों के पास मजबूत खानदानी निज़ाम है, हर घर ओल्ड होम है और हर घर बेबी होम है और बेबी सिटिंग है उसमें, बड़ा खूबसूरत निज़ाम है आज भी हमारा। इनके कानून खुद साख्ता हैं, मुसलमानों के पास शरीयत है, इनमें बेहयाई भी है, तलाक़ें भी हैं, सूद और उधार पर मुश्तमिल माशरे हैं, जबकि इस्लामी माशरे में बेहयाई लूट खसूट और सूद बिल्कुल नहीं होता। शिर्क की वजह से ये इत्मीनान कल्ब और बरकत से महरूम है। एक जुमला लिख लीजिए, एक दौलत जो गैर मुस्लिम के पास कभी नहीं हो सकती, वो इत्मीनान कल्ब और बरकत की दौलत है। किसी के पास जाकर देखिए, उसका दिल अंदर से खाली है, डिप्रेशन है, दुख है, या आगे हम पढ़ते जाएंगे अगले पारों में भी, जबकि तौहीद की वजह से दिलों में इत्मीनान और कल्ब में बरकत है। इसी तरह अमूमन ऐसे लोग ज़ाहरी तौर पे सफाई पसंद होते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल हाइजीन नहीं है इनके पास। तहारत नहीं करते, पानी इस्तेमाल नहीं करते, शावर नहीं लेते, जबकि मुसलमान के पास तहारत और सफाई वाला आधा ईमान है। हमसे क्या चाहिए कि हम गैर मुस्लिमों से मरूब होकर उनको अपना दोस्त बनाने की बजाय हम उनको इस्लाम दिखाएं? तो हमें सर उठाना है, और ये सब पॉइंट आपको इसलिए दिए गए कि आपको खुशी हो कि आप मुसलमान हैं। ज़रा सा इससे अपने आप को ऊंचा कीजिए, अपना मोरल बुलंद कीजिए। क्यों कहते हैं कि इस्लाम बुरा और मुसलमान बुरे? ऐसी भी बात नहीं है। जितना आपको अपनी सच्चाई का यकीन होगा, इतना इंशाल्लाह आप दूसरों से मरूब नहीं होंगे। फिर एक और बहुत बड़ा फितना क्या आता है, जब आपके अंदर मरूबियत होती है, इंप्रेस्ड होते हैं आप दूसरों से, क्या आप गैर मुस्लिमों की तकलीद करने लगते हैं, फुट स्टेप पे पाँव रखते हैं, बस उनका तौर तरीका, उनका लिबास, उनकी जुबान, कल्चर, त्यौहार, रहन सहन उसको इख्तियार करते हैं, उनका निज़ाम तालीम आता है, उनकी मसनूआत को इस्तेमाल करने पे फ़ख्र है। मेड इन जापान और मेड एस जापान, देख लीजिए फ़र्क, सबको पता है मेड इन चाइना और मेड एस चाइना, बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पे मरते हैं क्योंकि बाहर से आए हैं, उनकी रिसर्च और उनकी ख़बरों पर एतमाद करते हैं। तो गैर मुस्लिमों से मुतासर होना और मरूबियत आने लगती है। फिर दुनिया में देखिए बिगाड़, फितने और फसाद और असरात है, वो जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। और आखिरत का बिगाड़, फितने और फसाद जो होंगे, वो वहाँ की तबाहियों की सूरत में होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम गैरों को इतना आगे देखते हैं, तो हम उनको विलायत के दर्जे पे मानने लगते हैं। करना क्या है? आज अगर दुनिया में गैर मुस्लिमों से विलायत महसूस हो और मरूबियत होगी, तो याद रखिए इसके दुनिया में चंद आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, सीक्वेंसेस ऑफ दिस। नंबर एक, मादियत परस्ती आएगी, लोग मटीरियलिस्टिक होंगे। आज देखिए रिश्तों की पहचान नहीं है, माल कमाना है, पैसा पैसा। बेटियां, जवान बेटियां सारी रात घर से बाहर रहती हैं, बापों को माओं को नींद कैसे आती है? नींद नहीं आती थी उन माँ बाप को जिनकी बेटी घर से बाहर निकलती थी। आज दूसरे शहरों, दूसरे मुल्कों, गाड़ियां चला के, जहाजों में जाकर बेटियां जाती हैं, किसी के कान पे जूना रींगे। ठीक है, आपको एतबार है, बच्चियां बहुत अच्छी होंगी, बच्चे भी बहुत नेक होंगे, क्या इतनी मेहनत करके आप दूसरी जगहों पे बच्चों को दीन के लिए भी भेज सकते हैं? इल्ला माशाल्लाह। फिर जरा जाहिलियत आम होगी, देखने को लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, लेकिन अंदर जहालत होगी, अहले ईमान से ताल्लुकात में बिगाड़ होगा, आपको अपने मुसलमान नहीं फिर अच्छे लगते। जैसे इस वक्त कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही ये बातें मेरी, क्योंकि मरूबियत इतनी, हमने अपना इस्लाम देखा ही नहीं। इस फितने का एक बहुत बड़ा हल ये है कि अपनी तारीख से ताल्लुक जोड़िए, सीरत पढ़िए, सहाबा के किस्से पढ़िए। हज़रत उमर के 10 साल दौरे हुकूमत में क्यों 3 लाख मुरबा मील तक मुसलमान जा चुके थे, वो जाके पढ़िए, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। फिर इसी तरह इसका एक और नुकसान क्या होता है कि मुसलमान भाइयों की तकलीफ़ों पर बेहिसी है। आज खबरें सुनने के दौरान जो खून बहता स्क्रीनों पे देखते हैं, और बाद में कहते हैं आज मीठे में क्या, बेहिस हो चुके हैं मुसलमान, दुआओं में भी शायद ही कोई याद आता होगा। फिर इस तरह गैर मुस्लिमों की तकलीद की वजह से ईमान में कमी आती है, अल्लाह की नाराज़गी आती भी और उसके काम भी होते हैं। फिर अल्लाह की रहनुमाई और मदद से ऐसे मुसलमान महरूम हो जाते हैं और फितने और फसाद जगह पकड़ लेते हैं। अल्लाह ताला हमें इस फितने से निकाल दे। आज उम्मत मुस्लिमा पे आए हुए फितनों और आजमाइशों में शायद ये एक बहुत बड़ा फितना है, अगर सबसे बड़ा फितना नहीं है। आखिरत में क्या नुकसान होगा इस फितने के शिकार होने वालों को? तो याद रखिए कि गैर मुस्लिमों की तहजीबो तमद्दन और कल्चर से मुतासर होकर उनकी तकलीद करना, आखिरत में शर्मिंदा होगा इंसान, खसारा और हसरत होगी, दखूल जहन्नुम का बायस होगा। ऐसा मुसलमान भी अगर गैर मुस्लिमों से विलायत रखेगा और मरूबियत के असरात में होगा, तो उसके साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला हो सकता है, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल लिव टुगेदर। कौन मुसलमान इस फितने का शिकार है? अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं हैं, तभी तो आप कुरान सुन रहे हैं अभी तक। कुरान से जुड़े हुए लोगों के अंदर से असल में सबसे पहले यही फितना निकलता है अल्लाह की रहमत से। लेकिन ज़रा देखते हैं कि आखिर कौन, यानी अपने हीरे छोड़कर दूसरों के जरकोन के पीछे कौन मरते हैं? अल्लाह ने हमें हीरे दिए, मोती दिए, चांदी दिए, इतनी प्यारी शरीयत दी, इसको छोड़कर हम लोगों की बनाई हुई चीज़ों और उन चीज़ों पे क्यों खोने लगे? तो लिखिएगा चंद पॉइंट्स कि किन मुसलमानों के ऊपर इसका असर है। जैसे लोग कहते हैं ना कोरोना फैला, लेकिन कौन इसका शिकार होगा? तो बताते हैं ना लो इम्यूनिटी वाले लोग और बीमार और बूढ़े और बच्चे और कैंसर पेशेंट्स। इसी तरह इस फितने का शिकार कौन से मुसलमान होते हैं? नंबर एक, जिनका ईमान पक्का नहीं होगा, रासिख नहीं है, जमा हुआ नहीं है, जिन्हें ईमान की कदरों कीमत ही नहीं पता, जो कुरान और सुन्नत से दूर हों, जिन्हें शरीयत के अहकामात की हिकमतों का पता ही नहीं है, और जिनके दिल में सिर्फ दुनिया हो और फिक्र आखरत ना हो। अल्लाह हमें ऐसे मुसलमानों में ना करे। اور اسی لیے اب آگے آیت 36 میں دیکھیے ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جس کے اوپر اللہ نے کسی بھی شیطان کو مقرر کیا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سر ہوتا ہے کہ شیطان جس کے سر پہ آتا ہے سب سے پہلے اس کو یہ یقین دلاتا ہے یو آر ویری رائٹ، تم بالکل ٹھیک ہو، تم حق پہ ہو، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے، ساری زندگی شیطان کو چمکائے رکھا۔ دیکھیے گا آیت 36، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اسلامی ماڈرنزم کے نام پر شیطان کے بہکاوے، کیسے شیطان بہکاتا ہے اس نام پہ کہ تم ماڈرن ہو جاؤ۔ پہلی بات دیکھیے، برابری کے نام پہ عورت کے حقوق کا استحصال ہے، یعنی عورت کے بیچاری کے اوپر جو ظلم اس کو مرد کے برابر کر کے لوگوں نے کیا شاید کبھی نہ ہوا ہو۔ جدت پسندی کے نام پہ کھلم کھلا بے حیائی کہ ڈو سمتھنگ نیو، اور اس پہ ٹیسٹ بدلتے بدلتے آپ گندگی سے گندگی تر میں پہنچ گئے۔ اس سے ہم جنس پرستی کے ہیں، شیطان کا بہکاوا ہے ماڈرن لگو گے، یہ کہ اب تم ایک لڑکی کے ساتھ ہی پھرو، اسٹوپڈ ہو، لڑکا لڑکا پھرے، لڑکی لڑکی پھرے، یہ اندر کے پرسیپشنز ہیں جو مائنڈ کنٹرول کیے ہوئے ہم آج لوگوں کے، اور اسی کا اثر ہماری نسلوں میں بھی آ رہا ہے۔ اس طرح آزادی کے نام پہ لا دینیت، یعنی آج کے دور میں ماڈرنزم کا دعویٰ کیا ہے کہ جتنے آزاد ہو گے، جتنے دین کو چھوڑو گے اتنے آزاد ہو جاؤ گے۔ بزرگ والدین کی خدمت سے محرومی اور اولڈ ہومز میں ان کو ڈال دیا، وہ دن جو آپ کے دعائیں لینے کے تھے وہ نرسیں بیچاری دعائیں لے کے چلی جائیں گی، شاید ان کو ہی اللہ کچھ دے دیں۔ جو بہوؤں کو خدمت کر کے، جو پوتوں نواسوں کو خدمت کر کے جنت دنیا میں ملنی تھی وہ آپ نے اپنی ماسیوں کو دے دی آج کل کے، جاؤ تم دعائیں لے لو امی جی کی، ہمیں نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے دل سے نکلتی ہے، جو خدمت کرے گا وہ جیتے گا۔ اس طرف دیکھیے مادیت پرستی، میٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی۔ آج معاشرے کو ماڈرنزم نے کیا دیا؟ سنگل مدرس دی ہیں، سنگل پیرنٹ، ایک عورت چار قسم کے بچے لے کے پھرتی ہے، باپ ہے ہی نہیں ان کا، وہ کہتی ہے بھائی پسند ہی نہیں آیا کوئی مرد۔ آٹھ بچوں کو لے کے جانے والی ایک عورت رنگ برنگے بچے لے کے جا رہی تھی کسی ٹرین میں، لوگوں نے سمجھا کہ کوئی ڈے کیئر چلاتی ہوگی، کیا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ کہیں گے سارے میرے بچے ہیں۔ کہتی ہے اچھا تمہارے ہسبینڈ کی کیا نیشنلٹی ہے؟ کہیں گے بھی شادی تو کی نہیں، پسند ہی نہیں آج تک، آٹھ بچوں کی ماں بن گئی، کوئی گورا کوئی کالا کوئی چٹا کوئی فلاں فلاں، شادی نہیں ہوئی۔ یہ ماڈرنزم کے نام پہ شیطان نے تحفے دیے انسانیت کو۔ اس طرح ویکینڈ پارٹیز کے نام پہ فن اینڈ فرولک، رات دن کے نظام کا تغیر، صبح کو سوتے ہیں تو رات کو جاگتے ہیں، اور برانڈ پرستی، برانڈس کو پوجنے والا ہو گیا آج کا مسلمان بھی۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، اس سے زیادہ شاید ہی کریٹیکل کوئی پارا گزرا ہو، لیکن یہ سچ ہے، یہ کڑوی گولی کھائیں گے تو ہی امت کے پودے پہ بہار آئے گی انشاءاللہ، صحت بھی تبھی ملے گی۔ اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا، کیا بس تو ان بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو، بس ہم اگر تجھے یہاں سے لے جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یعنی ان کے دن گنے جا چکے ہیں، آپ کے سامنے ہی کوئی ان پہ عذاب آ جائے یا پھر آپ کے بعد ہو، کیا پتہ چلا کیسے کام کرنے والوں کو بالآخر اللہ کی پکڑ کا شکار تو ہونا ہی پڑتا ہے، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا وہ ہم تجھ کو دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں، بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی سے مضبوط تھا میرے، دوبارہ یہی مشورہ اس بارے میں، پہلے بھی بالکل ایسا ہی مزاج گزرا ہے کہ اس وہی کو پکڑ لیں، بس آج کے ماں باپ کے لیے اس بارے کو پڑھنے کے بعد یہی پیغام ہے، اور آج کی ینگ بچیوں اور بچوں کو بھی اپنے لیے یہی سہارا ڈھونڈنا ہے کہ فس تم سک بل لذی اوہی الیک، یہ ہے وہ خوبصورت سہارا، فقد استم سک بل اور وطل وسقہ، سورت بقرہ میں آپ آیت الکرسی کے بعد پڑھ چکے کہ جس نے اس دین کو پکڑ لیا نا بس وہ ہے کامیاب۔ بس آپ کے میرے لیے یہی پیغام ہے کہ اس قرآن کو اب صرف رمضان میں نہیں تھامنا تھا بلکہ اس کو بعد میں بھی تھامنا ہے، بے شک آپ راہ راست پر ہے، اور یقیناً یہ خدا آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال جواب ہوں گے، کیا کیا تھا میرے دین کے ساتھ، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی پوچھیں گے سناؤ مسلمانوں کیا کیا میرے دین کے ساتھ، آپ کسی کے اس کو امانت رکھا ہے اور آپ کے بعد اس کو خوب مس یوز کریں اور ٹوٹی پھوٹی حالت میں اور پکڑ پکڑا کے آپ کو دے، کیا اللہ کے نبی نہ کل پوچھیں گے سناؤ بھائی شریعت کا کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں وہ ایک پرزام نے ہندوازم کا لگا دیا، ایک کرسچینٹی کا لگایا، ایک جیوزم کا لگا دیا، ایک بدھازم کا لگایا، پھر چلتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، آپ گاڑی کے پرزوں میں ایک موٹر سائیکل کا لگا دیں، आप एक वॉशिंग मशीन का पुर्जा लगाएं, एक सिलाई मशीन का, गाड़ी चलेगी। आज हमने इस्लाम की गाड़ियों में दूसरे मजहबों के पुर्जे लगाए और फिर कहते हैं इस्लाम चलता ही नहीं, पता नहीं कैसा इस्लाम देंगे। नाउज़ बिल अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला हमारी सलाह कर दे। और हमारे नबियों से पूछो जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था, क्या हमने सिवाय रहमान के और माबूद मुकर्रर किए थे जिनकी इबादत की जाए? और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर फिरौन और इसके उमरा के पास भेजा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा कि मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सीधा तारुफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज, तबलीग में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए, सच निकलेगा जुबान से, सच दिलों को मुसख्खर करेगा। बस जब वो हमारी निशानियां लेकर इनके पास आए तो वो बेसाख्ता इन पर हंसने लगे, और हम इन्हें जो निशानी दिखाते थे वो दूसरी से बड़ी चढ़ी हुई होती थी, और हमने इन्हें अजाब में पकड़ा ताकि वो बाज आ जाएं। और उन्होंने कहा है जादूगर, देखिए मूसा को जादूगर कह रहे हैं, ये भी हर तौर में ताना मिला अम्बिया करम को, क्योंकि हक दिल में असर करता है। फिर कहते नहीं, ये वो जादू कर देते हैं और ये हिप्नोटाइज कर देते हैं। आज भी हक की बात लोग सुने तो लोग आगे से कहते हैं हाँ जी कुछ बातें और हैं अंदर, हम नहीं बता सकते, बस ये कुछ जादू टूना है। कहने लगे जादूगर, हमारे लिए अपने रब से इसकी दुआ कर जिसका इसने तुझसे वादा कर रखा है, यकीन मान के हम राह पर लग जाएंगे। फिर जब हमने वो अजाब इनसे हटा लिया, उन्होंने इसी वक्त अपना कौलो इकरार तोड़ दिया। आज भी लोग यही करते हैं, मुश्किल आई दीन वालों को बुलाओ, इन वालों को बुलाओ, दुआ करो जी और बस तौबा करेंगे। आज कितने घरों में इस कोरोना के लिए पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, वजीफे कर करके दुआएं मांग मांग के मुसीबतें टलवाते हैं, और जब वो टल जाती हैं तो दोबारा वही काम करते हैं। और फिरौन ने अपनी कौम में मुनादी करा दी और कहा है मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं? और मेरे मोहल्लों के नीचे ये नहरें बह रही हैं, क्या तुम देखते नहीं? छिछोर बना, छोटे बंदे को ज्यादा मिल जाना वैसे ही करता, इसको इज्जत रास नहीं आई। तो क्या सीखा हमने इन आयात में? कुरान की नौरानियत और अजमत, असली ज़ादे राह तकवा है, सवारी पे सवार होने की दुआ सीखी सूरह ज़ुख़रुफ़ में, और सिर्फ बेटे ही नहीं बेटियां भी अल्लाह की रहमत हैं, और शैतान से बचो। अब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को जो ताना देता है वो एक लुकनत का ताना है, मन हाज़ल्लज़ी हुवा मुहीन वला यकाद युबीन, क्या मैं बेहतर नहीं हूं बनिस्बत इसके जो बेतौकीर है, यानी जिसकी इज्जत नहीं है और साफ बोल भी नहीं सकता, यानी इसकी तो लैंग्वेज ही नहीं ठीक, इसको तो इंग्लिश ही नहीं सही आती। अच्छा इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं आ पड़े, या इसके साथ परा बांधे, कोई फरिश्ते ही आ जाते, बस इसने अपनी कौम को बहलाया फुसलाया और उन्होंने इसकी मान ली, यकीनन वो सारे ही नाफरमान लोग थे। देखिए कैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी करता, लेकिन याद रखिए हक वालों को बेफिक्र रहना चाहिए। सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई आपका बाल का बीका नहीं करता। कहने लगा कि मैं तो ऐसा हूं, और अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि फिरौन की ये बातें सुनकर क्या हुआ, फलम्मा सफूना, फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया। अल्लाह को गुस्सा आता है जब उसके अम्बिया कराम को और उसके नेक बंदों को लोग इस तरह निशाना बनाए। तो जब अल्लाह को गुस्सा आया तो क्या हुआ, तो हमने इनसे इंतकाम लिया और इन सबको डबो दिया, बस हमने इनको गया गुजरा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दी। फिरौन डूब गया। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगती है, और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो, यानी कहते थे फिर ईसा को क्यों पूछते हैं अगर हम बुतों को नहीं पूछ सकते, तो अल्लाह बता रहा है कि ईसा को पूछने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। ये भी उन्हीं लोगों का तरीका है जो किताबें हिदायत से फायदा नहीं उठाते। और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो, तुझसे इनका ये कहना महज झगड़े की गरज से है, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। ईसा अलैहिस्सलाम भी बंदे ही हैं जिस पर हमने एहसान किया और उसे बनी इसराइल के लिए निशाने कुदरत बना दिया, यानी बिन बाप के पैदा किया, और अगर हम चाहते तो तुम्हारे ही बस फरिश्ते पैदा कर देते जो जमीन में जानशीनी करते। देखिए कैसे मुंह मारी करते थे लोग उस दौर में, अब आज तो नबी है नहीं ना, कल जो अम्बिया कराम के मुंह पे बैठ के बातें करते थे आज लोग हदीसों पे करते हैं, सुन्नतों पे ऐसी बातें छांटते हैं। और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है, बस तुम क़यामत के बारे में शक न करो और मेरी ताबेदारी करो, यही सीधी राह है, और शैतान तुम्हें रोक न दे, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे लाए तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ। अल्लाह अकबर, अम्बिया कराम का कॉन्फिडेंस देखिए। आज भी जब लोग इस्लाम के बारे में कोई बात करें ना, तो आप अम्बिया कराम के तरीके तबलीग को पढ़ना शुरू कर दें, आपको बहुत सारे हिंट मिलेंगे इंशाल्लाह। और इसलिए आया हूँ कि बस इन चीज़ों में तुम मुख्तलिफ हो, इनको वाज़ह कर दूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, मेरा और तुम्हारा रब फक्त अल्लाह है, बस तुम सब इसकी इबादत करो, राह रास यही है, फिर बनी इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तलाफ किया, पस जालिमों के लिए खराबी है दुख वाले दिन की आफत से। ये लोग सिर्फ क्यामत के मंतजर हैं कि वो अचानक इन पर आ पड़े और इन्हें खबर भी ना हो। और आगे नोट कीजिए, एक आयत बड़ी प्यारी है, अल खिल्लाउ यौमैज़िन बादहुम लिबादेन मुत्तकीन। उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। क्यों, कैसे? देखिएगा, नौजवान नस्ल में तेजी से बढ़ते हुए रुझानात जो बुरी दोस्तियों की वजह से आए, उनको बताइए ये आयत कि दोस्तियां सिर्फ उस दिन ईमान वालों की कायम रहेंगी, बाकी सब दोस्त दुश्मन बने होंगे। तो विलायत का मियार तकवा है, मरूबियत नहीं। बस आप देखिए कि दोस्तों के नाम पे फिर वैलेंटाइन में खुल्लम खुल्ला फहाशी होती है, क्रिसमस डे में शिर्क और शराब चलती है, मदर्स डे क्या है, माँ से ताल्लुक जिंदगी भर का नहीं सिर्फ एक दिन का, हर साल में बढ़ते क्या है, मगरबी कल्चर है। तो गैर मुस्लिमों से दोस्ती और उनकी नक्काली में, गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शिरकत ने आज उम्मत मुस्लिमा की यूथ का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। बहकी की रिवायत है कि जो कोई कुफार के शहरों में बात हुआ और इनके त्योहार मनाए और इनकी नक्काली की, यहाँ तक कि वो इसी हालत में मर गया, तो क्यामत वाले दिन इसका हशर इन्हीं मुनकिरों के साथ होगा। अल्लाह हमारी आंखें खोल दें। तो मोमिनीन के दोस्त और उनकी विलायत का मेयार क्या है? दोस्ती का मेयार है मोहब्बत अल्लाह के लिए और बुग़्ज़ अल्लाह के लिए। याद रखिए, ये अकीदे से ताल्लुक़ रखती है चीज़, अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। ईमान वालों के दोस्त अल्लाह हैं, रसूलुल्लाह हैं और मुत्तकी और अहले ईमान हैं। अच्छे और मुत्तकी दोस्त हक की तरफ बुलाते हैं और क़यामत तक साथ देते हैं और देते ही रहेंगे। और अल्लाह दोस्तों को दोस्तों की सिफारिश से भी इंशाल्लाह जहन्नुम से या तो निकालेगा या जन्नत देगा। इसलिए अब फरमाया सूरत के ततीमे की तरफ चल पड़े हम लोग, मेरे बंदो आज तुम पर ना कोई खौफ है और ना तुम गमज़दा हो गए। लफ्ज़ मेरे को गौर कीजिएगा, जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और थे भी वो फरमाबरदार मुसलमान, तुम और तुम्हारी बीवियां हशाश बशाश यानी राजी खुशी जन्नत में चले जाओ। बीवी का कितना तस्करा, क्योंकि जोड़ बनता ही इसके साथ है, गर्लफ्रेंड बीवी नहीं हो सकती। इनके चारों तरफ से सोने की रकाबियां और सोने के गिलासों का दौर चलाया जाएगा। इनके जी जिस चीज की ख्वाहिश करें और जिससे इनकी आंखें लज्जत पाएं, सब वहां होगा और तुम इसमें हमेशा रहोगे। यही वो बहिश्त है कि तुम अपने आमाल के बदले इसके वारिस बनाए गए हो। चंद सेकेंड आए 72 पे गौर करें। सारी जिंदगी जिस चीज के लिए इंसान कोशिश करे, जब वो मिल जाए तो क्या हाल होता है। अल्लाह हमें भी ये जुमले सुनवाना और हमारी दुनिया में इसके लिए कोशिशें और तेज कर दे। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खूब खाते रहोगे। बेशक गुनाहगार लोग अजाबे दोजख में हमेशा रहेंगे, ये अजाब कभी भी इनसे हल्का न किया जाएगा और वो इसमें मायूस पड़े रहेंगे। अल्लाह अच्छे अंजाम की तरफ बुला रहे आपको मुझे। और हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद ही जालिम थे, और पुकार पुकार कर कहेंगे ऐ मालिक, जहन्नम के दोरोगा को पुकारें। आप हाईलाइट कर सकते हैं इस आयत को, या मालिक तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे, यानी मौत दे दे हमें जहन्नुम में डालने के बाद। वो कहेगा तुम्हें तो हमेशा रहना था, तुम तो जीना चाहते थे, लिव फॉर एवर। हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आए हैं, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत करते थे। क्या उन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है? तो यकीन मानो कि हम भी पुख्ता काम करने वाले हैं। क्या इनका ये ख्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों को और इनकी सरगोशियों को नहीं सुन सकते? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास ही लिख रहे हैं। कौन? फरिश्ते किरामन कातिबीन। हर बात हर लफ्ज़ लिखा जा रहा है। आप कह दीजिए, अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद हो तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला होता। आसमान जमीन और अर्श का रब जो कुछ ये बयान करते हैं इससे बहुत पाक है। अब आप इन्हें इसी बहस और मुबहसे में और खेल कूद में छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से सबका पड़ जाए जिसका ये वादा दिए जाते हैं। छोड़ो इनको तमाशों में, संजीदा नहीं है, दे आर नॉट सीरियस पीपल। इन पे मेहनत करना अब आप छोड़ दीजिए। याद रखिए, कुछ लोगों को इंसान अपनी पूरी एफर्ट देता है, और जब वो डिजर्व ना करते हैं तो उनको उनके हाल पे छोड़कर औरों का रुख करना चाहिए। वही आसमानों में माबूद है और जमीन में भी वही काबिल इबादत है, और वो बड़ी हिकमत वाला और पूरे इल्म वाला है। वो बहुत बरकतों वाला है जिसके पास आसमानों जमीन और इनके दरमियान की बादशाहत है, और क्यामत का इल्म भी इसके पास है, और इसी की जानेब तुम सब लौटाए जाओगे। जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो तो सिफारिश करने का इख्तियार तक नहीं रखते। हाँ, सिफारिश के मुस्तक वो हैं जो हक बात का इकरार करें और इनको इल्म भी हो। अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि इन्हें किसने पैदा किया, तो यकीनन जवाब देंगे कि अल्लाह ने। फिर ये कहाँ उल्टे जाते हैं, यानी जब पैदा अल्लाह ने किया तो बात उसकी क्यों नहीं मानते, उसकी दी हुई शरीयत को अपनी ज़िंदगी पे लागू क्यों नहीं करते। पैगंबर का अक्सर ये कहना कि मेरे रब यकीनन ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते, बस आप इनसे मुंह फेर लीजिए। जी वस्फह अनहुम वकुल सलाम फसौफ यालमून, बस आप इनसे मुंह फेर लें और कह दें कि अच्छा भाई सलाम, इन्हें अन करीब खुद ही मालूम हो जाएगा। तो सूरत पूरी होती है ज़ुख़रुफ़ इस पैगाम पे कि बाप दादा के बातिल अकायद पे जमे रहने वाले हठधर्म होते हैं, दिल मान रहे होते हैं लेकिन जुबान नहीं करार करती। अल्लाह चाहता तो तमाम लोगों को एक ही गिरोह बना देता, फिरौन के दावे और उनका अंजाम बुरा था, और फरमाबरदारों को जन्नत की खुशखबरियां मिलेंगी जो इस सूरत में देखी, और जहालत और खबासत की इंतहा अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है। हालांकि आप देखिए शिर्क की तो इस कायनात में कोई गुंजाइश नहीं। आयत 84 में देखिए वहुवल्लज़ी फिस्समाई इलाहुन वफिल अर्दी इलाहुन, यानी जमीन और आसमान का इला एक ही है, देर इज नो टू गॉड, यानी अहुरमन और यजदा नहीं है। तो क्या सीखा कि अल्लाह की खालिस तौहीद का इकरार करके इंसान फिर तौहीद अलूहियत और तौहीद हाकमियत को तस्लीम करे और शिफात के मतलब अपने अकायद को दुरुस्त कर ले, जबकि दौरे हाजिर के फितने क्या हैं कि अल्लाह की शरीयत को नाफिज ना करके और उसको ना मान के शिर्क फिल हुक्म यानी हाकमियत का शिर्क करते हैं, और शिफात के मुतालिक गलत अकायद का शिकार है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। आगे सूरत दुखान है, 44 नंबर की सूरत, इसमें क़यामत की एक निशानी की तरफ भी इशारा मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फी लैलति मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, कसम इस वजाहत वाली किताब की, यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम डराने वाले हैं। यह है लैलतुल कदर, अल्लाह हमें इस साल नसीब कर दे। इसी रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है, हमारे पास से हुक्म होकर हम ही हैं रसूल बनाकर भेजने वाले। तो देखिए यहाँ लैलत मुबारक है, जबकि सूरत कदर में लैलतुल कदर है, फरिश्तों रूहुल अमीन का इस रात में नजूल होता है। कुरान पाक का नजूल एक ही दफ़ा में जो आसमान दुनिया तक हुआ वो इसी रात में हुआ, और पहली वही भी लैलतुल कदर की रातों में से अल्लाह के नबी के पास आई। सारे साल में होने वाले वाकयात का फैसला किया जाता है, और इस रात की इबादत 1,000 महीने की इबादत से बेहतर है। तो अब जो चंद रातें रह गई हैं, ताक रातें खास तौर पे, इस सोच से दुआएं मांग लीजिए कि अगले पूरे साल में अल्लाह हमारे हक में खैर कर बेहतरियों के फैसले कर दे, और इस साल मुझे कुरान से जोड़ दे, जुड़ा हुआ तो जमा दे, सीखा नहीं तो सिखा दे, सिखा रहा हूँ तो आगे बढ़ा दे, और मुझे इस किताब से दिन ब दिन करीब कर दे। आपके रब की मेहरबानी से वही है सुनने वाला जानने वाला, जो रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है। अगर तुम यकीन करने वाले हो, कोई माबूद नहीं इसके सिवा, वही जिंदा करता और मारता है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का। कितना वाजे है अकीदा कुरान का, और आज मुसलमान कितना खोखला हो गया अल्लाह के मामले में, बल्कि वो शक में पड़े खेल रहे हैं। आप इस दिन के मंतजिर रहे जबकि आसमान जाहिर धुआं लाएगा, जो लोगों को घेर लेगा, ये दर्दनाक अजाब है, कहेंगे हमारे रब ये आफत हमसे दूर कर, हम ईमान कबूल करते हैं। ये है जी कुर्बे क्यामत की अलामत। अबू दाऊद की रिवायत है 4311 में क्यामत की जो निशानियां दी गई उसमें एक है जखूरे दुखान, धुआं होगा, और उसका जिक्र आपको इसमें मिल गया। बाकी निशानियां पीछे भी पढ़ चुके, आगे भी पढ़ लेंगे। इनके लिए नसीहत कहाँ है, हालांकि खोल खोल कर बयान करने वाले पैगंबर इनके पास आ चुके, फिर भी उन्होंने इनसे मुंह फेर लिया और कह दिया कि सिखाया पढ़ाया हुआ बावला है। देखिए अल्लाह के नबियों को क्या क्या बातें सुननी पड़ी इस पैगाम को पहुंचाने के रास्ते में। हम अजाब को थोड़ा दूर कर देंगे तो तुम फिर अपनी इसी हालत पर आ जाओगे, जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे, बिल यकीन हम बदला लेने वाले हैं। यकीनन इनसे पहले हम कौम फिरौन को भी आजमा चुके हैं, जिनके पास अल्लाह का बाइज्जत रसूल आया यानी मूसा अलैहि सलाम कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, यकीन मानो मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, और तुम अल्लाह के सामने सरकशी न करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लाने वाला हूँ। और मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ इससे कि तुम मुझे संसार कर दो। यानी अम्बिया को धमकियां मिलती थी, उसके जवाब में अल्लाह की पनाह, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग ही रहो। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ये सब गुनाहगार लोग हैं, हमने कह दिया कि रातों रात तू मेरे बंदों को ले कर निकल, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तू दरिया को साकिन छोड़कर चला जा, बिला शुबा ये लश्कर गर्क कर दिया जाएगा। और आगे देखिएगा, बड़ा ही उदास करने वाला अंदाज है कि लोग तो डूब गए लेकिन उनके घर बाकी रहे। इसीलिए कयामत के दिन भी जो कुछ होने वाला है उसी की बात इधर कर दी गई। वो बहुत से बागात और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और राहत बख्श ठिकाने और वो आराम की चीजें जिनमें वो ऐश कर रहे थे इसी तरह हो गया। वरसना कौमन आखरीन, और हमने इन सब का वारिस दूसरी कौम को बना दिया, सो इन पर ना तो आसमान जमीन रोए और ना इनको मोहलत मिली। फमा बकत अलैहिम, हदीस में आता है कि एक नेक बंदा जब दुनिया से जाता है तो जमीन और आसमान उस पर रोते हैं, और हर बंदे के लिए आसमानों में दो दरवाजे हैं, एक वो जिससे उसका रिस्क उतरता है और दूसरा वो जिससे उसका अखलाक ऊपर चढ़ता है। आप और मैं भी सोचें, मेरे मरने के ऊपर कौन रोएगा? क्या सिर्फ दो बच्चे, चार बच्चे या फिर जमीन और आसमान रोएंगे? याद रखिए कि नेक बंदे से कायनात भी सिंकनाइज हो जाती है। आप हदीस में पढ़ते हैं कि इल्म की तरफ जाने वाले के लिए दरियाओं की, समंदरों की मछलियाँ और फिजाओं के परिंदे और फरिश्ते दुआएं करते हैं। तो आपको मुझे भी इसी चीज़ की फिक्र करनी है कि हम दुआएं लेने वाले बन जाएं। और वो सब छोड़ के चले गए, अब मोहलत अमल ख़त्म हो चुकी है। और बेशक हमने बनी इसराइल को रुस्वा कुन सजा से निजात दी जो फिरौन की तरफ से हो रही थी, फिलबा के वो सरकश और हद से गुजर जाने वालों में से था, और हमने दानिस्ता तौर पर बनी इसराइल को दुनिया जहान वालों पर फौकियत दे दी। उस वक्त सब्र में कामयाब हो गए, बाद में फेल हो जाएंगे, नेमतों के पर्चों में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। और हमने इन्हें ऐसी निशानियां दी जिनमें सरीख आजमाइश थी। ये लोग तो यही कहते हैं कि आखिरी चीज यही हमारा पहली बार दुनिया से मर जाना है और हम दोबारा उठाए ना जाएंगे। अगर तुम सच्चे हो तुम्हारे बाप दादाओं को ले आओ, यानी इस तरह की बातें करके मजाक करते थे। क्या ये लोग बेहतर है या तुब्बा कौम के लोग और जो इनसे भी पहले थे? हमने इन सबको हलाक कर दिया, यकीनन वो गुनाहगार थे। हमने जमीन और आसमान और इनके दरमियान की चीजों को खेल के तौर पर पैदा नहीं किया बल्कि हमने इन्हें दुरुस्त तदबीर के साथ ही पैदा किया, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। बात तो सच है, ये पता लग जाए तो हम हकीकत में दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रूप में आ जाएं। यकीनन फैसले का दिन इन सब का तयशुदा है। इस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम ना आएगा, ना उनकी मदद की जाएगी। दोस्तियों के किबले ठीक कर लीजिए, अगर कुछ कमी रह गई है कल का पारा सुनने के बाद। तो ये दोस्त हैं जो हमें पीयर प्रेशर का शिकार करते हैं, आके डराते हैं, खबरों में ये आया, फलां जगह ये हुआ, ना ना ये ना करना। तो हर ऐसा दोस्त जो आपको अल्लाह के दीन पे अमल करने से रोके उससे पनाह मांग लीजिए। मगर जिस पर अल्लाह तआला की मेहरबानी हो जाए वो जबरदस्त और रहम करने वाला है। बेशक जक्कूम थोर का दरख्त गुनाहगारों का खाना है जो मिसल तल छटके और पेट में खौलता रहता है। सोचिए जरा, जब कौमें जिस्मानी तौर पर आज़ाद हो जाएं लेकिन जहनी गुलामी से ना निकल सकें तो उनका हाल कुछ ऐसा ही होता है। फिर आवाम शिर्क का शिकार हो जाती है और ख़ास लोग कल्चर के नाम पर न्यूडिटी और गंदगी को फैलाते हैं और हमारा हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है। आप देखिए कि आयत 41 में जो बात की गई तो असल में गैर मुस्लिमों को विलायत के दर्जे पे पूजने की ये सज़ा है कि मुसलमान गुमराह हो जाते हैं। फिर ज़ाहरी हाल हुलिये से शुरू होने वाला बिगाड़ बिलाखिर अकीदों को भी मसख कर देता है। हसूले तालीम का मकसद बेहतर रोजगार बन जाता है। हर कामयाबी को साइंस की इजाद और अपनी मेहनत से जोड़ दिया जाता है। मॉडर्न होने के लिए मुशरिकाना रस्म और रिवाज की अंधी तकलीद शुरू हो जाती है। कल्चर के नाम पर दीन से दूरी होती है। अबू दाऊद की रिवायत है 4031, आपने फरमाया जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वह इन्हीं में से है। आज हम खुद सोचें और ये जो बुरा अंजाम सुन रहे हैं उसको सुनते वक्त देखिए कि क्या हमारा आज वो हाल नहीं हो गया कि वी लिक द बूट्स दैट किक्स अस, हम उन्हीं के जूते चाटते हैं कि जो हमें ठुड्डे मारते हैं। ये है मरूबियत के तोहफे। आप जहन्नम की बातों को सुनते वक्त सोचिएगा, अगर खुद से प्यार है ना तो ये हो नहीं सकता कि आप और मैं अपने आप को जहन्नम से ना बचाएं, और अगर हमें अपनी औलादों से प्यार है तो ये हो नहीं सकता कि हम उनको जहन्नम से ना बचाएं, और अगर हमें अपनी दोस्तों से प्यार है तो ये हो नहीं सकता कि उनको आग से ना बचाएं। ये सब सुनते वक्त सुनिएगा जहन्नुम के कुछ मंजर। मिसल तेज गर्म पानी के, हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ो और खींचते हुए दोजख के बीचों बीच ले आओ, फिर इसके सर पर सख्त गर्म पानी का अजाब बहाओ। यही अकल थी ना जो अल्लाह के दीन को नहीं समझ सकी थी, अब इसके ऊपर गर्म पानी डाल दो। इससे कहा जाएगा चखता जा, तू बड़ी इज्जत वाला बड़े इकराम वाला था, यानी बड़ा बाइज्जत समझता था खुद को नाफरमान बनकर। यही वो चीज़ है जिसमें तुम शक किया करते थे। बेशक अल्लाह से डरने वाले अमन चैन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में बारीक और दबीज रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। ये इसी तरह है, और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से उनका निकाह कर देंगे। दिल जमई के साथ वहां हर तरह के मेवों की फरमाइशें करते होंगे, और वहां वो मौत चखने की नहीं, हाँ पहली मौत जो वो मर चुके, यानी आखिर में मौत को भी मौत आ जाएगी। और इन्हें अल्लाह ताला ने दोजख की सजा से बचा दिया, ये सिर्फ तेरे रब का फजल है, यही बड़ी कामयाबी है। हमने इस कुरान को तेरी जुबान में आसान कर दिया ताकि वो नसीहत हासिल करें। अब तो मुंतजिर रहे, वो भी मुंतजिर है। जैसे उर्दू तर्जमा पढ़ते वक्त समझ आता है, अल्लाह करे ऐसी कुरान पढ़ते हुए भी समझ आ जाए। तो दौरे खाजर का एक फितना, आयत 38 में लिख लीजिए सूरह दुखान की, मकसद तखलीक को भुला देना। हमारी और कायनात की तखलीक का एक बहुत बड़ा मकसद है, जिसने याद नहीं रखा उसके लिए जहन्नम में जक्कूम और खौलता हुआ पानी है, जिसने याद रखा उसके लिए जन्नत के मेवे बारीक और रेशम के लिबास हैं, और दोनों को फिर वहां मौत नहीं आएगी। तो वमा खलकना समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, दोनों को साथ साथ लेकर चलिए तो इंशाल्लाह अमल की रग़बत भी आएगी और फिक्र भी लग जाएगी। तो क्या सीखा सूरह दुखान से? अजीम शान कुरान का नजूल और लोगों की गलत फहमी, यानी लोग इस रात को जो कि लैलतुल कदर की सूरत में रमजान में है, वो शाबान की 15 तारीख के नाम पर लेते हैं। हक आने के बावजूद गाफिल शक और शुबे और लाहो लायक में मशगूल है। उस दिन कोई दोस्त किसी के काम ना आएगा, और जन्नती खुराक लिबास और नेक लोगों पर अल्लाह का फजल होगा। ये सारी नेमतें पाने वालों को आज कोशिश करनी है, अगर इसकी ख्वाहिश है तो फिर इसके लिए तैयारी भी करनी होगी। आगे है सूरत जासिया, घुटनों के बल गिरी हुई, अल्लाह अकबर, आजिज करने वाली सूरत है। 45 नंबर की सूरत, 37 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्ना फिस्समावाति वल अर्दि लायातिल लिल मुमिनीन, कायनात की निशानियां दिखाकर ईमान पुख्ता किया जा रहा है। ये किताब अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से नाजिल की हुई है, आसमान और जमीन में ईमानदारों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं, और खुद तुम्हारी पैदाइश में और इन जानवरों के फैलाने में यकीन रखने वाली कौम के लिए बहुत सी निशानियां हैं। बार बार ये जुमला आप सुनेंगे, आयात तो लिकौमी याकिलून कहीं यू मिनून, अल्लाह में इन आयतों पर गौर करने वाला बना दे। और रात दिन के बदलने में, और जो कुछ रोजी अल्लाह ताला आसमान से नाजिल फरमा कर जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है, यानी इसमें भी निशानी है, और हवाओं के बदलने में भी। आप देखिए कायनात में चूंकि इतना सर सिस्टम चल रहा है तो हमें एहसास नहीं होता, वरना इतनी स्पॉन्टेनियस चेंजेस जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इन सब को देख कर भी इंशाल्लाह दिल में अल्लाह की बड़ाई आएगी। और रात और दिन के बदलने में जो कुछ रोजी आसमान से नाजिल फरमा कर जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है, इसमें हवाओं के बदलने में भी इन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं निशानियां, अल्लाह में अक्ल इस्तेमाल करने वाला बना दे। ये हैं अल्लाह की आयतें जिन्हें हम आपको रास्ते से सुना रहे हैं, बस अल्लाह ताला और इसकी आयतों के बाद ये किस बात पर ईमान लाएंगे, इसको भी हाईलाइट कीजिए। इस कुरान को पढ़कर अगर हिदायत ना मिली, ईमान ना मिला, तो फिर इससे ऊपर तो कोई किताब भी नहीं। वैल और अफसोस है हर एक छूटे गुनाहगार पर, और जो आयत अल्लाह ताला की इनके सामने पढ़ी जाती हुई सुने फिर भी गरूर करता हो, जिन्हें इस वक्त आयतें सुन रहे और अंदर से नो नो आ रही है, या इसका हक नहीं दे रहा, साथ कुछ और कामों में मसरूफ है, और इस तरह अड़ा रहे गोया के सुनी ही नहीं, तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। वो जब हमारी आयतों में से किसी आयत की खबर पा लेता है तो इसकी हंसी उड़ाता है। मुस्तहज़िउन को कभी हिदायत नहीं मिलती, कभी दीन के किसी हुक्म का मजाक ना उड़ाइए, वरना हिदायत का दरवाज़ा सील हो जाएगा, बहुत देर दरवाज़ा खोलें भी ना तो सील हो जाता है। तो जो लोग हिदायत के लिए दरवाज़ा ना खोलें और मजाक करें, गोया के फिर उनके हिदायत के दरवाजे लॉक हो चुके और चाबियां भी गुम गईं। जब वो हमारी आयतों में से किसी आयत की खबर पा लेता है तो उसकी हंसी उड़ाता है। यही लोग है जिनके लिए रुसवाई की मार है और इनके पीछे दोजख है। जो कुछ इन्होंने हासिल किया था वो इन्हें कुछ भी नफा ना देगा। सारी तरक्की दुनिया में रहेगी, धरी की धरी। डिग्रियां कब्र में नहीं जाएंगी साथ। और इसी तरह दुनियादारियां और अल्लाह के बंदों को पीछे डालकर अल्लाह के दुश्मनों को खुश करने की कोशिशें कुछ क्यामत के दिन काम नहीं आएंगी और ना वो कुछ काम आएंगी जिन्हें उन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज बना रखा था। कोई आपसे मौत का वक्त नहीं टाल सकता, चाहे आप उसको कितनी बड़ी ताकत समझ लें। इनके लिए तो बहुत बड़ा अजाब है। ये सरतपा हिदायत है और जिन लोगों ने अपने रब की आयतों को ना माना इनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को ताबे बना दिया ताकि इसके हुक्म से इसमें कश्तियां चलें और तुम इसका फजल तलाश करो और तुम शुक्र बजा लाओ। और आसमान और जमीन की हर हर चीज को भी इसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए ताबे कर दिया। कितने खिदमतगार अल्लाह ने आपके मेरे लिए लगा दिए, फिर भी हम आग में चले जाएं अल्लाह को नाराज करने, इससे ज्यादा ना शुक्री ना होगी। जो गौर करें यकीनन वो इसमें बहुत सी निशानियां पा लेंगे। आप ईमान वालों से कह दीजिए वो इन लोगों से दरगुजर करें जो अल्लाह के दिनों की तवक्को नहीं रखते, मेमोरियल डेज, ताकि अल्लाह ताला एक कौम को इनके करतूतों का बदला दे और जो नेकी करेगा वो अपने जाती भले के लिए और जो बुराई करेगा इसका बवाल इसी पर है। फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब, हुकूमत और नबूवत दी और हमने इन्हें पाकीज़ा और नफीस रोजियां दी थीं और इन्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी थी। हम मुसलमानों को आईना दिखाया जा रहा है और हमने इन्हें दीन की साफ साफ दलीलें दी। फिर उन्होंने अपने पास इल्म के पहुंच जाने के बाद आपस की जिद और बहस से ही इख्तलाफ बर्पा कर डाला। ये जिन जिन चीजों में इख्तलाफ कर रहे इनका फैसला क्यामत वाले दिन इनके दरमियान खुद तेरा रब करेगा। फिर हमने आपको दीन की जाहिर राह पर कायम कर दिया, ये आपका मेरा दीन, बस आप इसी पर लगे रहें और नादानों की ख्वाहिशों की पैरवी में ना पड़ें। ये है मरूबियत से निकलने वाली बातों में से आखिरी बातें। याद रखें ये लोग हरगिज अल्लाह के सामने आपके कुछ काम नहीं आ सकते। समझ लें कि जालिम लोग आपस में एक दूसरे के रफीक होते हैं और परहेजकारों का वली यानी कारसाज अल्लाह ताला है। ये कुरान लोगों के लिए बसीरत की बातें हैं और हिदायत और रहमत है इस कौम के लिए जो यकीन रखती है। क्या बताया जा रहा है इसमें कि यकीन के साथ सुनोगे तो फायदा होगा और जो इस यकीन की दौलत से महरूम कर दिया गया वो बिल्कुल जाया हो गया। तो क्या देखा आयत 19 में, वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन, अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। कौन सा अल्लाह? जिसने शरीयत दी, जिसने हमें शरीयत के इत्तबा करना सिखाया। इसके बरक्स अब देखिए बेल मुशरिकों और मुनकरों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। मुसलमान और मुनकरों की शरीयत अलग है, इसलिए इनसे विलायत एक फितना होगा। मुशरिक एक दूसरे के दोस्त, मुत्तकियों का दोस्त अल्लाह। आज हमारी नौजवान नस्ल का मसला दूसरों से मरूब और अपने मुसलमान होने पे शर्मिंदा, खुद एतमादी की कमी है, ईमान की कमजोरी। सोचिए अपने बारे में, पूछिए मेरे बच्चों के रोल मॉडल्स कौन हैं, बस फिर उन्हीं को तो लाइक करेंगे। क्या इन लोगों का जो बुरे काम करते हैं ये गुमान है क्या मैं इन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक काम किए, और इनका मरना जीना यकसां हो जाएगा? बुरा है वो फैसला जो ये कर रहे हैं। तो फिर लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत। और आसमान और जमीन को अल्लाह ने बहुत ही अदल के साथ पैदा किया ताकि हर शख्स को इसके किए हुए काम का पूरा पूरा बदला दिया जाए और इन पर जुल्म ना किया जाए। क्या आपने उसे भी देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? कहाँ देखें, आईने में खुद को पूछने वाले खुद को नाराज नहीं कर सकते? जिनको सबसे ज्यादा फिक्र है तो अपनी, जिनको सबसे ज्यादा प्यार है तो अपना। खुद को नाराज नहीं करते, अल्लाह को नाराज करते हैं। टू मच सेंसिटिव, अपने ही गुनगाने वाले। याद रखिए ऐसे मुसलमानों की बात जहां दोबारा आ गई, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। और बावजूद समझ बूझ के अल्लाह ने इसे गुमराह कर दिया और इसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और इसकी आंख पर भी पर्दा डाल दिया। अब ऐसे शख्स को अल्लाह के बाद कौन हिदायत दे सकता है? यानी जाहिल को तो अल्लाह हिदायत दे जो इल्म पढ़कर अपनी भूल जाए। देखिए इसमें वो सारे उलमाए सू आते हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने पढ़ाने के बाद भी शख्सियत परस्ती के शिकार होते हैं और लोगों को अपने गुण सुनाते हैं। बड़ी बड़ी बातें अपने नाम पे, मैं समंदर पे गया, मछलियों ने मुझे सलाम किया, मैंने 13 साल ख्वाब में अल्लाह के नबी से हदीस पढ़ी। ये क्या जुमले हैं? ये नफ्स परस्ती के जुमले हैं। अब ऐसे शख्स को अल्लाह के बाद कौन हिदायत दे सकता है? और क्या अब भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते? तो अफराई तमने तहद इलाहु, कौन है खुद से मरूब, है दावा मुसलमान होने का लेकिन नमाजों से बेपरवाह। जानबूझकर रोजे छोड़ने वाले, जक़ात में डंडी मारने वाले, साहिब इस्तेआत होते हुए भी हज से गाफिल, सूदखोरी से अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुर्तकिब, और बेहयाई फैला कर अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाले। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। लिखिए, बेअमल खुश फहम मुसलमान, तमन्ना है जन्नतुल फिरदौस, दुनिया में अरजां तरीन सस्ते हो गए, मुसलमान की तो कोई कीमत ना रही जब अमल ना किया। ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है मौला तेरे महबूब की उम्मत में है। यानी सारे काम अपनी पसंद के और नस्बत अल्लाह के नबी की लेकर जन्नत मांगना चाहते हैं। तो हर दौर के फितनों में एक फितना ख्वाहिश नफ्स को इलाह बनाना। दीनदार शरीयत के रास्ते पे चलता है, दुनियादार ख्वाहिशात को इलाह बनाकर ख्वाहिशात के रास्ते पे चलता है। अपना जायजा लीजिए, कहीं मैंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को इलाह तो नहीं बना लिया और सिर्फ दुनिया के धोखे में आ गए। उन्होंने कहा, हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं, और हमें सिर्फ जमाना ही मार डालता है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को नहीं मानते बल्कि जमाने को कहते हैं कि ये हमें मारेगा और जिंदा करेगा। दरअसल इन्हें इसका इल्म ही नहीं, ये तो सिर्फ क्यास और अटकल से ही काम ले रहे हैं। और जब इनके सामने हमारी बाज़े रोशन आयतों की तिलावत की जाती है तो इनके पास इस कौल के सिवा कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को लाओ, आप कह दीजिए अल्लाह ही तुम्हें जिंदा करता है, फिर तुम्हें मार डालता है, फिर तुम्हें क्यामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। देखिए, बार बार नोट करें, इल्म नहीं लेते, समझते नहीं। तो कुरान के साथ इंशाल्लाह इस फितने का रद्द करना है। और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है। जिस दिन क्यामत कायम होगी, इस दिन अहले बातिल बड़े नुकसान में पड़ेंगे और आप देखेंगे हर उम्मत घुटनों के बल गिरी होगी। ये है सूरत जासिया। हर गिरोह अपने नामे अमाल की तरफ बुलाया जाएगा, आज तुम्हें अपने किए का बदला दिया जाएगा। उस दिन ये किताब साथ जानी है आपके मेरे। आज कुरान है ना, तो कल नामे अमाल में ढल जाएगी। ये है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच सच बोल रही है, तुम्हारा रैकेट। हम तुम्हारे अमाल लिखवाते जाते थे पस, लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए तो इनको इनका रब अपनी रहमत तले ले लेगा। यही सरीफ कामयाबी है। किसी बोलते हुए शख्स को अगर आप कह देना मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सब भूल जाएगा, हैंकी पैंकी हो जाएगी। आज से अपने आप के ऊपर एक चेक लगाइए कि मेरी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, फिर देखिए नामे माल कितना साफ सुथरा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया, मैं तो इनसे कहूंगा कि मेरी आयतें तुम्हें सुनाई ना जाती थी, फिर भी तुम तकबर करते रहे और तुम थे ही गुनाहगार लोग। और फिर जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह का वादा यकीनन सच है और क्यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम जवाब देते थे कि हम नहीं जानते क्यामत क्या चीज़ है। हमें कुछ यूं ही सा ख्याल हो जाता है, आज मुसलमान भी ये कहते शायद क्यामत आ जाए, हाँ हमें यकीन नहीं है। और इन पर इनके अमाल की बुराइयां खुल गईं, जिसको वो मजाक करते थे, इसने इनको घेर लिया और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला देंगे। वकील अल यौम ननसाकुम कमा नसी तुम लिका यौमिकुम हाजा। अल्लाह भुला देगा, जैसे कि तुमने अपने इस दिन से मिलने को भुला दिया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों की हंसी उड़ाई है। जुर्म नोट कीजिए, चार्ज शीट है जुर्मों की। और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था, बस आज के दिन ना तो ये दोजख से निकाले जाएंगे और ना इनसे उजर और माजरत कबूल की जाएगी। बस तारीफ अल्लाह की है, और जो आसमानों और जमीन और तमाम जहानों का पालनहार है, और तमाम बुजुर्गी और बड़ाई आसमानों जमीन में इसी की है, वही गालिब और हिकमत वाला है। फलिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाती व रब्बिल अर्दी रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रिया फिस समावाती वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये था पारा नंबर 25। क्या सीखा सूरज जासिया से? कुदरत की निशानियों पे गौर व फिक्र की दावत मिली, अल्लाह ताला के इब्ने आदम पर एहसानात सुने, ख्वाहिश नफ्स के पुजारी दीन से दूर रहते हैं, जमाने को गाली ना दो, और किबरियाई अल्लाह अज़्ज़वजल की चादर है। चंद गोल्डन वर्ड्स ले लीजिए इस पूरे पारे के जेम्स। अल्लाह वलीयुल मुत्तकीन, सिर्फ अल्लाह को वली बनाना है। गैर मुस्लिमों से मरूबियत और विलायत का ताल्लुक एक फितना और गुमराही है। जिक्र अल्लाह से गफलत और शैतान का साथ है। नेमतों की नाकदरी आजमाइश और अजाब दोनों सूरतों में होती है। इल्मे आखरत को फिक्र आखरत में ढालना है, अनफुस और आफाक में निशानियां देखनी है, और इकामत दीन और शरीयत को लागू करने सूरत शूरा की रोशनी में खास तौर पे। अब चलते हैं सल्यूशन, दवा लेके जाइएगा, इलाज करना आपका काम है। कैसे इस फितने का हल ढूंढें कि पीयर प्रेशर से निकलें, एम्बेरस मुस्लिम होने से निकलें, मरूबियत अल्लाह की हो दूसरों की ना हो। तो पहली बात है कि इसको समझिए कि वाकई ये एक फितना है और इसका इदराक करना है, यानी गुमराही है ये। इस फितने के असरात का इल्म हासिल करके अपना मुहासबा करना है, ये समझना कि दुनिया में मुनकिरों की शान शौकत और नेमतें दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से ढील हैं, फिर इम्प्रेस नहीं होंगे इंशाल्लाह उनके बारे में। फिर इसी तरह से मुनकिरों से मरूब हुए बगैर मुसलमानों को अपने पास ईमान, इल्मे हकीकी और शरीयत जैसी नेमतों पे फख्र करना है, इस बात का एहसास करना है कि गैर मुस्लिमों से मरूबियत और विलायत, और इस वजह से हमारे दीन और ईमान को खतरा लाहक हो जाएगा। आज वाकई हम खतरों में, ये खतरा तो बहुत कम लोगों को दिखता है। फिर जरा मुनकिरों के साथ मजबूरन रहना पड़े तो शरीयत और दीन इस्लाम पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। दारुस्सलाम को छोड़कर मुनकिर मुल्कों में से रिहायश इख्तियार करना फितने का बायस बन सकता है। अगर आपके पास इल्म और जुर्रत नहीं है इसी दीन पे अमल करने की, फिर इससे निकल जाइए, फिर छोड़ दीजिए वो मुल्क, क्योंकि अपने मुल्कों में जाकर जो मर्जी इंसान करे, कम अज़ कम गैरों को तो हम अपना अपना दिखाएं। जिंदगी के किसी मामले में मुनकिरों की पैरवी और मुशाबहत नहीं करनी, मुनकिरों की तरक्की से धोखे में नहीं आना, क्योंकि ये दुनिया आरजी है और इज्जत आखरत में ईमान और तकवा से मिलेगी। और इनकार करने वालों की बजाय अल्लाह रसूल और अहले ईमान को अपना दोस्त बनाना है, कुफर के अंधेरों को मिटाने के लिए कुरान को लेकर जबरदस्त जिहाद करना है, और अपने आप को और अपने बच्चों को मुस्लिम हिस्ट्री से रोशनास कराना है। कोई नियत कर लीजिए, इस्लामिक हिस्ट्री बहुत प्यारी किताब है, 3 जिल्दों में दारुसलाम से छपी है, इंग्लिश में है। पहली पूरी बुक नबी सल्लम से मुतल्लिक है, फिर उसके बाद सहाबा और उनके दौर, और तीसरी में आज तक मुसलमानों की हिस्ट्री के वाकयात हैं। खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।